Hare Rama, Hare Rama, कोटि धन्यवाद। आपने बहुत सुख दिया वैष्णवों को। ये प्रसादी माला किनका है, किसको चढ़ाया गया था? किसने है कृष्ण को, मतलब जगन्नाथ जी को? अच्छा, तो उनको मान दीजिए। गौरंगेर संगी गणे नित्य सिद्ध जेवा माने, लगता है गुणाणो प्रभु अवश्य चैतन्य महाप्रभु के कोई गण में। बहुत अच्छा लगा, मैं कई बार सुना हूँ इस पद को, गौरंगेर दूटी पद, लेकिन सबसे अच्छा आज लगा। बहुत धन्यवाद। तो इसके बाद ध्रुवदास प्रोग्राम करना चाहते। हाँ, जो भी प्रोग्राम चलते, तो एक कुर्सी भी रख दीजिए। यहाँ बैठिए। अच्छा ठीक है।
हरे कृष्णा। भागवत कथा के अनुवादन करना ये भारतीय परंपरा है, अनुवादन करना भी एक सेवा है, इसलिए कुछ भक्त लोगों को यह अनुमति दिया जाएगा भागवत कथा के अनुवादन करने के लिए। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा मंदिर के जनरल मैनेजर श्री पद गोकुलानंद प्रभु और मंगलाकांक्षी मंदिर का भुवनेश्वर कृष्ण बलराम मंदिर का वाय और भागवत कथा के अनुवादन करें।
समय सीमा बांध लेना चाहिए। इसके बाद और लोगों का नाम बोल दीजिए, तैयार रहेंगे।
इसके बाद आत्माराम प्रभु और गुड़ाना प्रभु, मिस्टर बाजला जी, और शाम को श्रीपाद मदन मोहन प्रभु।
श्रीपादय कृष्ण बेष्टाय भूतले श्रीमते गौर गोविंद गोस्वामी नामिने नम विष्णु पादाय कृष्ण बेष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी पचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्तारिणे वंशा कल्पतरु भेष कृपा सिंधु भेवच पतितानांग पावन्य भो वैष्णव जय अनंत कोटि वैष्णव श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण उपस्थ भक्त सज्जन मंडली मातृवृंद दीर्घ छ दिन धरी आपण माने पूजनीय श्री राधा गोविंद स्वामी महाराज श्रीमुखरु प्रेम पुरुषम श्रीमन चैतन्य महाप्रभु लीला पुरुषोत्तम परम पुरुष भगवान कृष्ण कथा श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथराज श्रीमद भागवत श्रवण कर आज मोर अनुबोधन विषय किसी कहूँ दुई स्थान भागवत नाम शुणा जाए ग्रंथ भागवत भक्त भागवत ग्रंथ भागवत जानवाक भक्त भागवत ठार् श्रवण करा पड़ो ये श्रवण इच्छा भक्ति श्रौत परंपरारे जे आसुचंते तांकर श्रवण भक्तिर 64 अंग मध्यरु 5 अंग मुख्य साधुसंग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरापुर वास श्रीमूर्तिर सदाय सेवन कृष्ण भक्ति जना ए पंच अंग अल्पसंग श्री महाराज को वृंदावन में देखा करी मो संगे आताराम प्रभु थी आमर अनुदर्कमी से संगे संगे भुवनेश्वर आसी आम को संग प्रदान कर भागवत कथा कह जानुरी 25-31 पर्यंत सम्मति प्रदान करते तजन जाए आमर कार्यक्रम अनुष्ठित हो वर्तमान अंतिम दिवस पहुँची अच्छी श्रील महाराज विलक्षण प्रवचन उपदेश छोट छोट गल्प मध्यम समस्त बुझाइवा प्रत्येक श्लोकर शब्दर अर्थ यह अत्यंत हृदयस्पर्शी हो महाप्रभु तुम सुस्थ रखु यहीपरि प्रत वर्ष एकाम क्षेत्र आमर भुवनेश्वर कृष्णमला मंदिर को आसी श्रीमन महाप्रभु बाणी प्रचार कर ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ଶିଳ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଣ୍ଟରରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଅଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ତାହା ହେଉଛି ହରିକଥା ଏହା ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଶିଳ ଗୁରୁଦେବ ଗୌରବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଅପ୍ରକଟ ପରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଶିଳ ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହରିକଥା ନ କହି ରହିପାରୁନଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା ପ୍ରାଣ ଅଛି ଯାହାର ସେହେତୁ ପ୍ରଚାର ତାହାର ଅଭାବ ଆଜି ଶିଳ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଆଂଶିକ ଭାବେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ ସେ ଅଧିକ ଦିନ ଆସି ଏଠାରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରୁ ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀମନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଏକାଧିକ୍ରମେ ରହି କୀର୍ତ୍ତନ ନଦିଆରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନ ଶ୍ରୀମନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଆଦି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମର କଥା କହି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଆମେ କୃଷ୍ଣମଳରା ମନ୍ଦିରରେ ସପ୍ତାହର ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ କହନ୍ତି ସେ କହନ୍ତି ୟା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଲୀଳା ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ବୁଝିବେ ମୁଁ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖେ ନିବେଦନ କରୁଛି ସେ କୃପା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ତୁମେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ବୁଝିପାରିବ ଶିଳ ମହାରାଜ ଏଥର ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ କଥା କହି ଆମକୁ ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଥର ମହାରାଜଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲାବେଳେ ସେ ଭାଗବତରୁ କେଉଁ ଟପିକ୍ କହିବେ ଆମେ କହିନଥିଲୁ ସେ ହଠାତ୍ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରୁ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୌଗନ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ କହିଲେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲେ ଗୌରଲୀଳା କୃଷ୍ଣଲୀଳା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତଫାତ ନାହିଁ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ଯାଇ ସଚିସୂତ ହେଲା ସହି ବଳରାମ ହୋଇଲେ ନିତାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଦାନ୍ୟ ଅବତାର ଔଦାର୍ଯ୍ୟମୟ ଓ କାରୁଣିକ ଅଟନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ସାତ ସିନ୍ଧୁକରେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଚାବି ପକାଇ ରଖିଥିଲେ ସେହି ଅବତାରରେ ତାହା ଖୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ ଅକାତରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଇଦଂ ତି ନ ତପସ୍କାୟ ନ ଅଭକ୍ତାୟ କଦାଚିନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ତାକୁ ଏଇ ଗୁପ୍ତ କଥା କହିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୌର ଅବତାରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ଉଠେଇଦେଲେ ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପୁନଶ୍ଚ ତା ନାମ ପ୍ରେମ ମାଳା ପରାଇଲେ ସଭାରେ
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे ताहा ही महाराजंकर तांको प्रवचन रे प्रतिवाद करी से भावस्तर रे किछ समय रही जाइछन्त अनुग्राहय भक्तानां मानुष्यं देहं आश्रित भजते तादृशं क्रीडा जा सुत्ता तत्पर भवेत् परम पुरुष भगवान कृष्ण सुहृदं सर्वभूतानां से आजुक 5000 वर्ष तले आसी मनुष्यला प्रदर्शन करछन्ति ताहा प्रामाणिक शास्त्र श्रीमद भागवत वर्णना करा जायछि कृष्ण रसिक शेखर नंदलाल नटवर ब्रजेन्द्र तनय कृष्ण तद्धाम वृंदावन रम्याकाची उपासना जा ब्रजवधु वर्गण वर्गिता सर्वोत्तम आराधना होछि गोपीमानक आराधना श्रील महाराज श्रीमद भागवत बलराम कृष्ण बलराम पौगंडला वर्णना कथा वर्णना करछन्ति ताहा माधुर्यमय अटे माधुर्य चतुष्टय वेणु माधुरी रूप माधुरी लीला माधुरी रति माधुरी यह केवल परम पुरुष भगवान कृष्ण ठारे अछि श्रील महाराज ये सब वर्णना बड़ सुंदर भाव रे देइ कृष्णंकर उत्कर्षता प्रमाण करछन्ति जय 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 रस सर्वरस सार परकिया भावे ताहा ब्रजति प्रचार भक्ति जगरे उन्नत नहले ए रस कथा बुझि हेबो नाही श्रील महाराज कृष्ण बलराम गोचारण लीला गोवर्धन पर्वतर महात्म धेनुकासुर वध कालीय दलन और नागपत्नी स्तुति आदि वर्णना कर श्रोता मान आनंद सगर निमज्जित करछन्ति प्रकृत पक्षे महाराज कृष्णजन प्रियजन अटंती कृष्ण निजे ही कही जयदम परम गुह्यं मत भक्ति सु अभिधास्यति मयि भक्तिमयी परांकृत्ता मांग यश्यसी अशंशय जो व्यक्ति ये श्रेष्ठ गुप्तगान कथा भक्त मान व्याख्या करे ताकु निश्चित भाव भक्ति प्राप्त हुए एवं शेषे से निश्चित भाव मो पाखक आसब पुनश्च कही कृष्ण न च तस्मात् मनुष्यसु कस्मिन् मे प्रिय कृतम भविता न चेमेतम तस्मात् अन्य प्रिय दुर्भुवि अर्थात ये पृथ्वी ता अपेक्षा अधिक प्रिय सेवक मोर आउ के नहीं किंबा आउ के हेबे नहीं जयशील राधागोविंद स्वामी महाराज की जय जयशील प्रभुपाद की जय जयशील गुरुदेव की जय समस्त भक्तवृंद की जय भागवत सप्ताह कथामृत की जय गौरूपानंद
जय गोकुलानंद प्रभु की
बहुत धन्यवाद बहुत अच्छा अपने
आत्मराम प्रभु देख रसंतु अनुमोदन सेवा करी बहुत परिश्रम करी आत्मराम प्रभु भागवत कथा पाई परिश्रम कर समस्त हाथ दाल दे स्वागत कर
लास्ट ईयर आत्माराम प्रभु रो दिए थे कि मैं दो टाइम कथा नहीं कहता भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमको स्वस्थ रखा पूरा की यार जगन्नाथ जी अपने चरण में बुलाते थे बहुत ठीक है
नमः विष्णु पदाय कृष्ण भ्रष्टाय भूतले श्रीमते गौर गोविंद गोस्वामी नित नामिने नमः विष्णु पदाय कृष्ण भ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दशतारिणी वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो हमारा ଏ ଯେଉଁ ହରିକଥା କୃଷ୍ଣ କଥା ଗୁରୁଦେବ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସବିନୟ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କ୍ରମେ ଏଠାକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆସି ହରିକଥା ପରିବେଷଣ କରୁଥିବାରୁ ଆମର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ସଂଘ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶାଖା ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ତେବେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପୂଜ୍ୟପାଦ ମହାରାଜ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କଥାର ପ୍ରତିଟି ଘଟଣାର ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଏଠାରେ ମହାରାଜ ଆମକୁ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ତାର ବିସ୍ତୃତ ଆକାରର ସୂଚନାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧରି ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କାରଣ ଅନେକ କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ତେବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଠାରେ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ସବୁଠାରୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଯେ ଭାରତର କେତୋଟି ରାଜ୍ୟରୁ ଭକ୍ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସି ଏଠାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଆମକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ତେବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଯାହାକି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆମର କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁ ଏରିଆ ଭିତରେ, ତାହା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଏକର, ଯାହାକୁ ଛବି କାନୁନଙ୍କ ଦାନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁଦେବ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କ୍ରମେ ଏହି ବିରାଟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ତଥା ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ମନ୍ଦିର ପଛରେ ଯେଉଁ 538 ଡେସିମିଲ୍ ଜମି ଅଧିକୃତ କରିଥିଲେ, ତାହା ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିନାହିଁ, ଯଦିଓ ସରକାର ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଏଠାରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ସଦିଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ହେବ, ଜଗନ୍ନାଥ 9 ଦିନ ଧରି ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ, ଜାନିଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ହେବ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସିବେ, ପ୍ରବଚନ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ କୃପାରୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ କୃପାରୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛୁ। ତେବେ ମୋର ବିଶେଷ ନିବେଦନ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଏକ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ ଜରିଆରେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟବହୁଳ ସମୟ ମଧ୍ୟ ନେଉଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଏକମତ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥଜୀଙ୍କ ନିକଟରେ, ବଳଭଦ୍ର ସ୍ୱାମୀ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏଠାରେ ଏକ ବିରାଟ ହଲ୍ ହୋଇସାରିଥିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ବସି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମହାରାଜଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃପା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଶୀଳ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କାରୁଣିକ ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ଆମର ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ରହିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ଭକ୍ତ ଭାଇମାନେ ଆମର ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ତେବାସୀ ତଥା ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ରହିବା ଖାଇବା ବା ଯିବା ଆସିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ, କାରଣ ଏ ମନ୍ଦିର ଏପରି ଏକ ମନ୍ଦିର ଯାହାର ଏକ ଅତି ଉନ୍ନତ ଉଜ୍ଜଳ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯେ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହର କିଛି ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଭକ୍ତମାନେ ଯେକୌଣସି ଉତ୍ସବ କରିବାକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜରେ ବା ଆମର ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁଠାରେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବା ସହରମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ପ୍ରତିଟି ଉତ୍ସବ ଚାଲେ। ଏହା ଏକମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯାହାକି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ଉତ୍ସବ ତଥା ଉପବାସ ପାଳନରେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଏହା ସହିତ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଗୁଣରେ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ
ଏବଂ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଯେପରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ଉତ୍ସବ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ତହିଁ ଆର ବର୍ଷ ଯେପରି ଭାବରେ ଅତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମାବେଶରେ ହେଇପାରିବ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ତାରିଖ, ଦିନ, ମାସ ଆଦି ଘୋଷଣା କଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେମାନେ ମହାରାଜଙ୍କ କୃପା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ କି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କି, ଜୟ ସମବେତ ଗୌର ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ କି, ଜୟ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବୈଷ୍ଣବ ବୃନ୍ଦ କି, ନିତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ହରି ହରି ବୋ।
ଜୟ ଶ୍ରୀପାଦ ଆତ୍ମାରାମ ପ୍ରଭୁ କି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଶ୍ରୀପାଦ ଗୁଣାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି କଥା କହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ସେବା କରିବେ। ହରି ବୋଲ।
ଓଂ ଜ୍ଞାନତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନଞ୍ଜନଶଳାକୟା ଚକ୍ଷୁର୍ମିଳିତଂ ଯେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ। ବାଞ୍ଛାକଳ୍ପତରୁର୍ଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁଭ୍ୟ ଚ ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟୋ ନମୋ ନମଃ।
ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସର୍ବାଗ୍ରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପରମ ଭାଗବତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମର ମୁମର ଭକ୍ତିପତ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଗମନରେ ଆମର ଏଇ ଭାଗବତ କ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ମହାପାବନ ହୋଇ ଉଠିଛି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆସି ଯୋଗଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବୈଷ୍ଣବ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ କାରୁଣିକ, ତାଙ୍କର ସହୃଦ କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିପାତରେ ସେ ଆଜି ଦୀର୍ଘ ସାତ ଦିନ ଧରି ଆମର ଏଠାରେ ଭାଗବତ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର କଥା ମହାରାଜ ଏଠାରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିଛୁ, ପ୍ରାୟତଃ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ହିଁ ସମସ୍ତେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ପ୍ରସଙ୍ଗମେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ଅପେକ୍ଷା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବୃନ୍ଦାବନର ତୃଣ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ସହିତ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ କହିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବର ହୃଦୟ, ଯାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ପରମ ଉଦାର ବା ଯେ ହେଉଛନ୍ତି କୃପାର ମୃତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ତେବେ ମହାରାଜ ଏହି ଭାଗବତ କଥାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଚାରଣ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ତେବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସୁଖ ବା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦରଜରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ପରମ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧାମ ମହାରାଜଙ୍କର ଶୁଭ ଆଗମନରେ
ମହାରାଜଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣରେ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧାମ ଆଜି ପରମ ପାବନ ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଖିଳ ଜୀବଜଗତର ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଯଶ ବା ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଶ ଏବଂ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ବଚନ ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଏଠାରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରଜଧାମରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ମିଳନ ଜନିତ ସୁଖ ଅନ୍ୟତ୍ର ସମସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଜାଣି ବ୍ରଜ ଗୋପୀଗଣ ତଥା ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ବ୍ରଜ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବା ନିମିତ୍ତ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲେ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲାଭ କରନ୍ତି ସେ ସୁଖ ସେ ଅନ୍ୟତ୍ର କେଉଁଠାରେ ଲାଭ କରିନଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତ ସୁଖ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ସୁଖ ହିଁ ବାସ୍ତବ ସୁଖ। ତେଣୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଗମନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗ ସୁଖ ଲାଭ କରିଛୁ ଆମେମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅକୃତିମ ହୃଦୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହକୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କାମନା କରୁଛୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ଅନୁମୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ,
ଜୟ ଶ୍ରୀପାଦ ଗୁଣାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କି। ବର୍ତ୍ତମାନ
ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଭାବ
ଲାଷ୍ଟ ମେ ଶ୍ରୀପାଦ ବାଜଲକୁ ହମ ଅନୁରୋଧ କରେଙ୍ଗେ ୟା ହିନ୍ଦୀ ମେ ଅନୁମୋଦନ କରେଙ୍ଗେ।
हरे कृष्ण। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा से इस्कॉन भुवनेश्वर शाखा के कृपा से मुझे राधा गोविंद महाराज का सान्निध्य प्राप्त हुआ।
पहली बार भागवत का अनुमोदन करना है, व्यास पूजा नहीं है,
भागवत का ही अनुमोदन कर रहे हैं।
मेरे विषय में ना बोल।
पहली बार हमने महाराज को 2 साल पहले सुना कर्ता के हिसाब से। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि आपको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो और सही में मैं आज ये शायद गर्व से अहंकार से जो तुच्छ है फिर भी मैं कह सकता हूं कि शायद मुझे कुछ भक्ति प्राप्त हुई। उनका आशीर्वाद मिला है, उनकी कृपा मिली है, उनकी कृपा से मुझे भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त हुई। इस्कॉन भुवनेश्वर का भी मैं काफी कृतज्ञ हूं। इस भागवत में हमें एक चीज जानने को मिलती है, नीति और व्यवहार के बारे में भी काफी उससे ज्ञान मिलता है और महाराज उसको इतनी अच्छी तरह बखान करते हैं कि कम से कम हम 7 दिन तो उस नीति और व्यवहार को हम अपने लाइफ में
रखते हैं। कम से कम 7
ऐसा ही है। भागवत के बारे में मैं बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मेरे में इतना ज्ञान नहीं है कि अभी मैं भागवत के बारे में विशेष कुछ कह सकूं, किंतु फिर भी भगवान महाराज की कृपा से जो मुझे कृष्ण भक्ति मिली है मैं उसके बारे में केवल इतना ही कहूंगा और आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि मेरे साथ कहें हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
माइक पर कहिए ऐसे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वंस मोर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
इन्होंने इस सेंटर को भुवनेश्वर मंदिर को बहुत सहयोग दिया है और इस कथा के कराने में भी इनका बहुत बड़ा सहयोग है।
और आज शाम को श्रीपाद मदन मोहन प्रभु को यहाँ महाराज कृपा करेंगे, कृपा माला प्रदान करेंगे। अभी महाराज को अनुरोध करता हूँ कि अभी कथा शुरू करें।
अन्याय कुछ लोगों को समय नहीं मिलेगा तो अभिशाप देंगे। लेकिन अब इसका दोष आप पर जाएगा, हम पर नहीं। असल मान लीजिए अनुवादन बढ़ा दिया जाए तो और भगवत की कथा चेतन चरितमृत की कथा यदि न हो पावे तो वो कहावत देहात की है कि जकरे बिया होकरे खाना बरी। हमारे यहाँ एक कहावत कहते हैं कि एक जगह बारात गई थी तो सबको भोजन मिला अच्छा से, और जो दूल्हा बन कर गया था उसको बरी माने बट्टी का आधा खंडित बट्टी का मिली बस। तो वो कहते हैं कहावत कि जेकरे बिया हो करे के खाना बरी। तो ये तो आयोजन चैतन्य चरितमृत का है, चैतन्य महाप्रभु का गुण गाना है, तो ऐसे अनुमोदन भी गुण ही गाना है उनका। लेकिन मुख्य चैतन्य चरितमृत से कथा अगर न हो तो यही कहावत होगी कि जिसके लिए सारा रचना की गई उनकी कथा रोक दी गई। तो इतना तो बहुत जरूरी था यहाँ के प्रधान भक्तों का और बाजला जी का अनुमोदन होना हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मैं तो चाहता हूँ कि शेष अन्य भक्तों को भी मौका मिले, लेकिन अब कथा भी कहानी है। मैं ऐसे सोचता था कि पुरुषों का इसी समय पूरा हो जाता, दिन में कुछ लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, रात में लेट होने में फिर ठीक नहीं करते है ना गोकुलानंद जी। थोड़ा सा और हो जाए तो हम एक घंटा कथा कहेंगे, लेकिन समय का ध्यान रखिएगा, एकदम घड़ी से 5 मिनट से ज्यादा न हो। और वहीं से प्रणाम कर लीजिए सबको, डीटी को सबको, और वंदना भी एक ही बार में कर लीजिए। गौर कृष्णदास ये स्वयं भागवत सप्ताह करते हैं कई जगह, मायापुर में इनका सप्ताह है। इसके बाद वृंदावन चंद दास और उसके बाद ब्रजेंद्र कुमार श्याम सुंदर दास सब चार किए तो चार ये लोग करें। यह दिव्य दृष्टि वैसे अर्जुन को भगवान ने दिया था। दिव्य का अर्थ स्पिरिचुअल नहीं होता है, दिव्य का अर्थ कभी कभी होता है दूर तक जो देख सको।
परमाराध्य श्री गुरुदेव, श्रद्धालु वैष्णव बंधुजन, परमाध्यक्ष श्री जगन्नाथ देव, आप सबके चरणों में विनीत दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के माध्यम से स्वरूपगत सुखानुभूति हो रही है, इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। लोगों को श्री कृष्ण रस भावित मति प्रदान करना सर्वविध श्रेष्ठम उपकार है जो गुरुदेव कर रहे हैं। इसी को श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण कॉन्शियसनेस कहा है। ऐसी मति प्राप्त हो सकती है कृष्णगत प्राण श्री कृष्ण रस भावित मति ब्रजवासियों के कृष्ण के प्रति व्यवहार को सुनने से, जिसे कृपा कर गुरुदेव हमें सुना रहे हैं। ब्रजवासियों का तन मन धन सब कुछ प्राण प्रियतम श्री कृष्ण के लिए था। पवित्र मन बुद्धि में कृष्ण के अलावा अपना कुछ नहीं था, श्री कृष्ण के लिए ही सारे व्यापार करते थे, श्री कृष्ण को सुखी देखकर सुखी होते थे, यह है कृष्ण प्रेम। आत्मेन्द्रिय प्रीति वंचा तारे बलि काम, कृष्णे इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र प्रेम तो प्रबल। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं श्री भगवान के मूड में कि ऐश्वर्य ज्ञानेते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत। लेकिन भगवान की कामना है जो महाराज श्री एक अन्य कथा में उदाहरण दिए थे कि किसी व्यक्ति से, खासकर किसी संबंधी से पूछा जाए कि ये कौन है, किसी पुत्र से पूछा जाए उसके पिता के विषय में कौन है, अनजान व्यक्ति अगर पूछे तो वह कह दे मनुष्य है, तो यह वास्तव में उपयुक्त परिचय नहीं है। वास्तव में मनुष्य तो है ही, लेकिन उसके साथ जो संबंध है उसको बतलाना चाहिए, ये हमारे पिताजी हैं, यह उचित बात है। भगवान तो भगवान है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के साथ उन सभी जीवों का संबंध है, और संबंध से संबंधित संबंध को बतलाना ही वास्तव में भगवान के प्रिय पात्रता है। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, यही भावे जय मोरे करे शुद्ध भक्ति, अपना के बड़ माने अमार समहीन, सेई भावे है आमी ताहार अधीन। माता मोर पुत्र भावे करे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन, सखा शुद्ध सखे करे स्कंद आरोहण, तुमी कौन बड़ लोक तुमी आमिषम। प्रिया जदि मान करी करे भर्षण, वेद स्तुति हैते हरे सेई मोर मन। इस प्रकार ब्रजवासियों के घनीभूत स्नेह में ऐश्वर्य विलुप्त हो जाता है, जैसा महाराज श्री श्रीपाद रूप गोस्वामी के उदाहरण को बतला रहे थे कि जैसे सोना किसी घी में रख दिया जाए और वो जम जाए तो दिखाई नहीं देता है, वैसे ही ब्रजवासी लोके कृष्ण सहज प्रीति, कृष्ण र सहज प्रीति ब्रजवासी प्रति। इस प्रकार महाराज श्री कथा के क्रम में भगवान के गोचारण लीला को प्रस्तुत किए, जो अत्यंत ही अद्भुत है। जब भगवान वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो चिन्मय वृंदावन में प्रत्येक व्यक्ति वस्तु कृष्ण सेवा के लिए प्रस्तुत हो गए, जिसे भगवान श्री बलराम जी से वर्णन करते हैं कि आपके स्वागत में वृक्ष फूल फल अर्पण कर रहे हैं, ये भौरे आपके जसोगान कर रहे हैं, और ये मयूर आपको देख कर नृत्य कर रहे हैं, ये हरिणियां आपको प्रेम से देख रही हैं जैसे गोपियां आपको देखती हैं। वृंदावन में प्रवेश कर श्याम सुंदर अपने गोप सखाओं के साथ विविध आनंद विहार करते हैं, भौरों हंसों कोयलों के स्वर के साथ होड़ करते हुए गाते हैं, मयूरों के साथ नृत्य करते हैं, साथ ही बाघ सिंह के बोली सुनकर डर भी जाते हैं। इस प्रकार गोप सखा उनके रुचि के अनुसार खेल खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और थक जाने पर किसी वृक्ष के नीचे कोमल पत्तों का सैया तैयार करके सुला देते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण बलराम जी के पाद संवाहन करते हैं और गोप सखागण श्री कृष्ण का, साथ ही पत्तों से पंखा करते हैं, मधुर संगीत सुनाकर शयन कराते हैं, जमुना जी में स्नान जलकेली तथा विविध पुष्पों और पत्तों से श्रृंगार और गेरु मिट्टी से चित्रकारी करते हैं। इस प्रकार केवल आनंद विहार होता रहता है। यह बात पहले नहीं समझ में आ रही थी, अब समझ में आ रही है। और चैतन्य चरितामृत की कथा तो अनिर्वचनीय है, महाराज श्री के मुख से सुनने का सौभाग्य मिला। रथारूढ़ जगन्नाथ के समक्ष राधा भाव भावित गौर सुंदर का नृत्य और विरह गान अद्भुत लगा। प्राणनाथ सुन मोर सत्य निवेदन, ब्रज अमार सदन जहां तुम्हार संगम, ना पाइले ना रहे जीवन। यह मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस भाव को श्री जी प्रस्तुत कर रहे हैं, श्री जी के मूड में भगवान चैतन्य महाप्रभु, और अंत में कहते हैं कि हे श्याम सुंदर, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। विदग्ध मृदु सदगुण सुशील स्निग्ध करुण तुम्ही तुम्हार नहीं दोषाभास। हे श्याम सुंदर, आप में कोई दोष नहीं है, आप विदग्ध हैं, आपका मृदु स्वभाव है, समस्त सद्गुणों के खान हैं, सुशील हैं, स्निग्ध व्यवहार है, परम कारुणिक हैं, आप में कोई दोष नहीं है। इतना होने के बाद भी तबे जे तुम्हारा मन नाही स्मरे ब्रजे जन, जे अमार दुर्दैव विलास। इतना गुणों के होते हुए भी आपका मन हम ब्रजवासियों का स्मरण नहीं कर पाता है, इसमें केवल हमारे दुर्दैव ही कारण है, आप नहीं। और श्याम सुंदर उत्तर में कहते हैं अनेक बातों को समझाते हुए कि हे प्रिय, प्रिया प्रिय संगहीना, प्रिया प्रिया संग बिना नाही जिए सत्य प्रमाण। वास्तव में कोई भी प्रिया प्रिय के बिना या प्रिय प्रिया के बिना नहीं जी सकता है, वास्तव में सत्य प्रमाण है। लेकिन क्यों जीते हैं इसका कारण बतला रहे हैं। मोर दशा सुने जबे तार यही दशा हवे, यही भय दुहे राखे प्राण। मोर दशा सुने जबे, जब मेरी प्रिया मेरे विषय में सुनेगी कि वो प्राण त्याग दिए तो उसकी भी यह दशा हो जाएगी, इस भय के कारण प्राण रखते हैं परस्पर दोनों। सेई सती प्रेमवती प्रेमवान सेई पति, वियोगे जे वांछे प्रिय हित। वास्तव में वही प्रेमवती सती है, वही प्रिया है, जो प्रेमवान के प्रति वियोग में भी उसका हित चाहती है। महाराज श्री प्रिया का अर्थ एक बार वृत्रासुर प्रसंग में बतलाए थे, प्रिया और पत्नी में अंतर, वो मुझे बार बार याद आता है। पत्नी तो ये अधिकार रखती है कि हमारा पति पालन करेगा, अगर कहीं परदेश में है तो याद करती है, इसलिए क्यों नहीं खबर ले रहा है, पैसा नहीं भेज रहा है, परिवार का मेंटेन कैसे होगा, बच्चों का खर्चा कैसे चलेगा, इस पर याद करती है। लेकिन प्रिया केवल हित विधान के लिए चिंतन करती है, कब मेरे प्रियतम आएंगे, और हम उनके अपने हाथों से सेवा करेंगे, उनका वस्त्र धोएंगे, भोजन बनाकर खिलाएंगे इत्यादि। तो ये है प्रिया का लक्षण स्वभाव। तो सेई सती प्रेमवती प्रेममान जेई पति वियोगे जे वांछे प्रिय हित, वियोग में भी अपने प्रिय का हित चाहती है। ना गने अपन दुख वांछे प्रिय जन सुख, सेई दुई मिले अचिराते। अपने दुख की कोई गणना गिनती नहीं करती है, केवल प्रिय की सुख चाहती है। इस प्रकार दोनों परस्पर एक दूसरे का स्मरण करके मिलते रहते हैं और मिलेंगे। तो इस कथा के फलश्रुति में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, इहा जे ई सुने से श्री चैतन्य पाए, सुदृढ़ विश्वास सह प्रेम भक्ति है। तो इस प्रकार के अद्भुत चरित्र सुनाकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो इस चरित्र को सुनता है वो सुदृढ़ विश्वास के साथ प्रेम भक्ति प्राप्त करता है। महाराज श्री बार बार इस बात को कहते हैं, अतः इस स्वरूपगत स्थिति को प्राप्त करने के लिए सतत श्रवण करते रहना चाहिए। इस प्रकार के सुयोग प्रदान करने वाले भुवनेश्वर के बंधुओं का मैं अत्यंत भारी हूँ। आप सब वैष्णव बंधुजन मुझ पर सहज कृपा करें, जिससे मेरी मति निरंतर कृष्ण में लगी रहे। जय श्रील कृष्णपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री राधे।
जय श्रीपाद गौर कृष्ण प्रभु की।
वृंदावन चंद्र वृंदावन चंद भी श्रीमद भागवत कथा करते हैं, सप्ताह भी करते हैं।
के बाद ब्रजेंद्रनंदन प्रभु और श्याम सुंदर प्रभु अनुवादक के लिए प्रस्तुत हो जाए।
विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिनिति नामिने नमस्ते। प्रभुपादय देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्यजन निस्तारिणे। हम लोगों का परम सौभाग्य है पांच छह साल से यहाँ आकर के, कटक को लेकर के छह सात साल से यहाँ आकर के हम लोग भागवत सुनते हैं। और भागवत कथा में भगवान के गुणों का साक्षात्कार होता है। इस बारे जो कथा हम लोग सुने तो उसमें बहुत सारे गुण भगवान के प्रकाशित हुए, लेकिन सबसे ज्यादा इस बात की अनुभूति हुई कि भगवान ने अतिशय संवेदनशील व्यक्तित्व वाले हैं। और जो भी व्यक्ति भगवान से जिस भाव से अपना संबंध रखता है, कुछ आशा रखता है, उसके प्रति वे प्रत्युत्तर वैसा देते हैं। शुरू में ही हम लोग गोचारण लीला का उपक्रम सुने तो भगवान ने वृक्षों के प्रति जो भाषण कर रहे हैं तो उससे स्पष्ट महसूस हुआ कि भगवान अतिशय संवेदनशील हैं और वृक्षों की जो भावना है उसका अनुमोदन कर रहे हैं और उनके जो अभिलाषा है उसके भी पूर्ति का आशीर्वाद दे रहे हैं। और भगवान के जो शैली है वो अद्भुत है। भगवान समझ रहे हैं कि वृक्षों के हमारे प्रति हमसे क्या लालसा है और उसको व्यक्त करके उनको सुना रहे हैं। कितना सुंदर शैली है, जैसा महाराज बतलाए कि भगवान ने अपने भाई बलराम जी से कह रहे हैं कि अहो अमे देव बरा मरार्चितम पादाम बुजम ते सुमन फलारहणम नमन तुपादाय शिखाभिरात्मन तमोपहत्ते तरुजन्म यत्कृतम। जब भगवान ने वन में प्रवेश किए तो देखे कि सतत तत्तारुण पल्लव श्रिया के सुंदर सुंदर वृक्ष हैं और उन वृक्षों में जो कोमल पत्ते हैं पल्लव हैं उनसे उनका सौंदर्य और बढ़ रहा है और फल फूल से वे लद करके और बिल्कुल झोंक करके भगवान का चरण स्पर्श कर रहे हैं। वो भगवान कोई निर्जीव व्यक्ति नहीं है, काठ पत्थर नहीं है कि बस वैसे चले जाए। तो दिखा रहे हैं बलराम जी से कि देखिए हे देववर देवताओं में श्रेष्ठ, आपके चरण कमल का पूजन देवताओं में श्रेष्ठ करते हैं, वैसे आपके चरण कमल का स्पर्श ये वृक्ष फूल और फल लेकर के कर रहे हैं और ऐसा भी कर रहे हैं। तमोपहत्यय आत्मन तमोपहत्यय, अपने तम के नाश के लिए। और भगवान समझ रहे हैं कि वृक्षों के मन में एक असंतोष है, एक दुख है कि भगवान के लीला में हम चल करके भाग नहीं ले रहे। और भगवान वहां आए हैं तो इस अवसर का वे लाभ उठा रहे हैं और इस प्रसन्न शिखान अपने मस्तक से अपने शिखा से झुक करके और भगवान का चरण स्पर्श कर रहे हैं और भगवान उनके मनोभाव का अनुवाद कर रहे हैं कि तमोपहत्यय तरुजन्म यत्कृतम। तरुजन्म यत्कृतम, जिसके द्वारा इनका वृक्ष का जीवन दिया गया है, जो व्यक्ति इनको वृक्ष का जीवन दिया है उसी के चरण में नमस्कार कर रहे हैं। और वृक्ष का जीवन बहुत श्लाघ्य जीवन है, जैसा आप कथा में सुने कि भजन करने के लिए साधकों के लिए आदर्श वृक्ष ही हैं, उन्हीं को आदर्श बनाया गया कि भजन करने वाले व्यक्ति को, कीर्तन करने वाले व्यक्ति को वृक्षों के समान जीवन बनाना चाहिए, वैसा आचरण होना चाहिए। तो ये श्लाघ्य है, तो कह रहे हैं कि यद्यपि उनके जीवन बहुत श्लाघ्य है, प्रशंसनीय है, लेकिन फिर भी उनके मन में एक असंतोष है, उसको दूर करने के लिए वे आपके चरणों में नमस्कार कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो एक तरह से भगवान उनके इस दुख को दूर करने का आश्वासन दे रहे हैं, वे अभिव्यक्त कर दिए कि इनका यह असंतोष यह दुख समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान के संकल्प से ही कोई कार्य हो जाता है। ब्रह्मा जी तपस्या किए तो बस वे कहे कि मैं जैसा हूं, जैसा मेरा स्वभाव है, जैसा लीला है, तथैव तत्व विज्ञान, वैसा ही अपरोक्ष अनुभूति आपको हो जाएगा मद अनुग्रहात मेरी कृपा से। और भगवान के कृपा से ही भगवान का अनुभव होता है, उनके लीला का आस्वादन होता है। तो वृक्षों के मन में यह है कि हम भगवान के लीला में भाग लें, वो भगवान वैसा आशीर्वाद दे रहे हैं। और जिस व्यक्ति के विषय, जिस व्यक्ति के हृदय में जैसा भाव है वैसा भगवान प्रति उत्तर दे देते हैं। जैसा आप सुने चैतन्य महाप्रभु के विषय में कि माता के हृदय में यह भावना है कि प्रिय निमाई को, हमारे पुत्र निमाई को यह व्यंजन बहुत अच्छा है, यह प्रसाद बहुत अच्छा है, वह आज नहीं है, कौन इस व्यंजन को खाएगा। भगवान तत्काल उसका उत्तर देते हैं और वो बतलाते हैं कि माता को समझाइए कि मैं जा करके व्यंजन खा लेता हूँ और माँ को भी यह अनुभूत हो रहा है। तो कहने का हमारा आशय यह है कि लीला कथा को सुनने से स्पष्ट है कि भगवान हमारे भावना के अनुरूप प्रति उत्तर देते हैं। और यह जो भागवत कथा है वो तो भगवान के इस भावना से बहुत मेल खाता है। मैं यह अनुभूत करता हूं कि जैसी भगवान की भावना है वैसे ही गुरु महाराज की भावना है। और यह जो भागवत कथा है तो वास्तव में जो हम लोगों का एक स्नेह की आकांक्षा है, भुवनेश्वर के भक्त जो एक अपना गार्जियन चाहते हैं, तो केवल उनके भावना का ही यह परिणाम है कि महाराज यहाँ की कथा निर्बाध रूप से चला रहे हैं। तो वास्तव में इस बात को समझना चाहिए, यद्यपि दूसरे और भी कारण हो सकते हैं। जैसे भागवत में कहा गया है कि जो संत हैं तो तीर्थानाम पावनिच्छया, तीर्थों की भी यह अभिलाषा होती है कि वैष्णव हमारे यहाँ आए, हम भी पवित्र हों। तो तीर्थों के इस अभिलाषा से ही वे इधर उधर जाते हैं। तो हम लोग तो अपने को बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं कि इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में आकर के कथा सुनते हैं। और महाराज के भी आने में एक कारण यह हो सकता है, लेकिन मुख्य कारण यही दिखता है कि जैसे भगवान अपने प्रेमियों के भावना का आदर करते हैं, तो वास्तव में भुवनेश्वर के भक्तों के भावना का आदर करके भगवान महाराज जी, गुरु महाराज अपने वात्सल्य गुण से आकर के और यहाँ कृष्ण कथा का परिवेषण कर रहे हैं। तो मैं यह कहूँगा कि यह बहुत सुंदर कार्य है और यहाँ के भक्तों को अपने भावना में स्थित रहना चाहिए, चूँकि यह लाभ मिलता रहे।
श्रीपाद वृंदावन चंद्र प्रभु की। इंद्र कुमार प्रभु,
तो आने में ही 5 मिनट बीत जाए। नहीं, फास्ट है, सुपर फास्ट।
ये सब उसके बाद श्याम सुंदर प्रभु,
ये सब भागवत के कथाकार हैं, इसलिए इनको छाइम दिया जा रहा है। ये सब लोग सप्ताह कहते हैं। ये ब्रजेंद्र कुमार प्रभु ब्रज मंडल में चंद्रावली सखी के गांव में भागवत किए थे, रिठौरा गोरखपुर में। पर यहाँ सप्ताह नहीं करना है, यहाँ अनुमोदन करना। ये प्रभुपाद जी से दीक्षा लेने गए थे, प्रभुपाद जी बहुत बीमार थे तो उन्होंने दीक्षा नहीं दिया, वो कह दिया हमको देने के लिए। वास्तव में प्रभुपाद जी के ही
सोल।
प्रभुपादस्य शिष्यस्य राधा गोविंद स्वामिने भक्ति शास्त्र ज्ञान प्रवर्तक। तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य महाराज जी, उपस्थित भक्त वैष्णव वृंद, माताएं एवं बहन, हमारा बहुत सौभाग्य है इस पावन तीर्थ पुरुषोत्तम क्षेत्र भगवान श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव और उनके परम किंकर वैष्णवाधिराज भगवान लिंगराज के चरणों में बैठकर विगत 6 दिनों से श्रीमद्भागवत कथा मृत का पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस सत्र में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की मधलीला के अंतर्गत निराचल गमन सार्वभौम भट्टाचार्य के ऊपर कृपा और जगन्नाथ रथ यात्रा के आगे नृत्य और इसी के अंतर्गत महाराज प्रताप रुद्र के ऊपर कृपा उन्होंने किया। शाम के सत्र में भगवान श्री कृष्ण की गोचारण लीला अर्थात वृंदावन प्रवेश और ब्रज प्रवेश और कालिये के ऊपर भगवान की कृपा का वर्णन महाराज जी के मुखारविंदों से एक एक अक्षर भागवत के शब्दों का रसास्वादन किया गया। श्रीमद् भागवत के प्रत्येक प्रसंग प्रत्येक श्लोक प्रत्येक शब्द रस से भरा हुआ है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, इसमें केवल फल है, रस ही रस है। जैसे मिठाई के भाग को किसी तरफ से खाया जाए तो सब ओर से उसमें केवल मिठास भरा हुआ है, वैसे ही श्रीमद् भागवत के जो 12 स्कंद हैं या प्रत्येक श्लोक प्रत्येक शब्द जो हैं उसमें केवल रस ही रस भरा हुआ है, इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इन भागवत कथा के शब्दों का महाराज जी ने गुरु महाराज ने बहुत सारगर्भित रस को बरसाया है। पहले स्वयं ये मनोयोग से इसका मनन करते हैं, इसके बाद पहले पान करके और तब दूसरे को पिलाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं रस को चख लेता है
जूठा कर देते हैं,
यह श्रीमद् भागवत कभी जूठा नहीं होता है। जैसे तोता किसी फल को खा लेता है तो वह खाने से वह उसकी मधुरता और बढ़ जाती है, तो वैसे ही परम पुरुष जो महाजन हैं संत जन हैं श्रीमद् भागवत को पी करके पिलाते हैं तो उसकी मादकता जो है मधुरता बढ़ जाती है। भगवान श्री कृष्ण ततश्च पौगंड वय श्रितो ब्रजे बभूव तुष्टौ पशुपाल सम्मतौ गाह चारयन्तौ सखिभिः समं पदे वृंदावनम पुण्य तीव चक्रतु। भगवान श्री कृष्ण ततश्च पौगंड अवस्था में भगवान श्री कृष्ण इसके बाद गोचारण करने के लिए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण को बाल कृष्ण को गाय चराने की क्या आवश्यकता पड़ी। वे एक राजा के पुत्र हैं, उनके पिताजी ब्रज के राजा हैं, जिनके यहाँ बहुत से दास दासियाँ हैं, तो उनके रहते हुए भगवान बाल कृष्ण को गोचारण करने की क्या आवश्यकता पड़ी। भगवान श्री कृष्ण केवल नंद बाबा और यशोदा मैया को ही सुख देने के लिए ही प्रकट नहीं हुए, वे समस्त जीवों पर कृपा करने के लिए उनका अवतार हुआ है। अनुग्रहाय भूतानां, भगवान का जो अवतार होता है सभी जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए। तो यदि वे अपने घर में ही रहते घर में ही बस चराते तो फिर वृंदावन के जितने जीव हैं पशु हैं पक्षी हैं कीट हैं पतंग हैं जमुना जी हैं सरोवर हैं फिर इनको कैसे सौभाग्य प्राप्त होता है। तो भगवान ने इन सब वृंदावन वासियों को सौभाग्य प्राप्त कराने के लिए, अपना सुख प्रदान करने के लिए और स्वयं सुख का आस्वादन करने के लिए श्री वृंदावन में प्रवेश किए, गोचारण करने के लिए तत्पर हुए। नहीं तो इसके पहले बछड़ा चराते थे। और दूसरा कारण है कि जिन बछड़ों का भगवान श्री कृष्ण ने सेवा किया था और वे बड़े हो चुके थे, तो श्री कृष्ण के बिना वे वृंदावन में गायों के साथ में चरने के लिए नहीं जा रहे थे, क्योंकि उनका जीवन श्री कृष्ण थे। जिसका जीवन श्री कृष्ण होते हैं तो श्री कृष्ण के बिना वह व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता है, उसका एक क्षण का वियोग भी करोड़ों जन्म के समान लगता है। तो बछड़े तो बचपन से ही श्री कृष्ण का संग प्राप्त किए थे, तो वे श्री कृष्ण के बिना गोचारण के लिए वन में कैसे जा सकते हैं। तो भगवान ने उनको उनकी रुचि का पालन करने के लिए भगवान वृंदावन में गोचारण करने के लिए विचार किए। नंद बाबा यशोदा मैया आज्ञा नहीं दे रहे थे, लेकिन भगवान ने हठ करके, जैसे एक छोटा बच्चा किसी वस्तु के लिए हठ करता है कि हमको यह चाहिए ही चाहिए ही, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने हठ किया, मैया मैं गाय चरावन जय हूँ, मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा। माता जी कहती है कि नहीं तुम छोटे हो, अभी गाय चराने के लिए मत जाओ, यहीं रहो। लेकिन भगवान इतने हठ किए कि हठ करके और यशोदा जी को राजी कर लिए। इसके बाद नंद बाबा से आज्ञा लेकर के और वृंदावन में प्रवेश किए गाय चराने के लिए सखाओं के साथ में। तो वृंदावन कैसा है इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। कथम भूतम वृंदावनम अति पुण्य, परम पवित्र है वृंदावन, स्वच्छ है, इसमें किसी प्रकार का अशुद्धता नहीं है। क्यों पवित्र है? वृंदा देवी ने विचार किया कि जब श्याम सुंदर वृंदावन में गोचारण के लिए प्रवेश कर रहे हैं तो जो हमारे प्रियतम हैं, कोई भी पतिव्रता स्त्री जब जानती है कि हमारे प्रियतम हमारे पति परदेश से हमारे घर में आने वाले हैं, तो अपने घर को झाड़ बुहार करके रखती है, साफ करके स्वच्छ रखती है, सजा कर रखती है, केवल अपने प्रियतम को प्रसन्न करने के लिए। वैसे ही वृंदा देवी जो भगवान की प्रिया हैं, जब उनको अपने प्रियतम का मनोभाव समझ करके उन्होंने वृंदावन को बहुत सुसज्जित किया, स्वच्छ किया, और जितने भी पुष्प हैं फल हैं सबसे वृंदावन को सजा दिया। कुसुमाकरम, वृंदावन कुसुम फूलों का आकर है, खजाना है, फूलों से भर गया, विविध प्रकार के फूलों से वृंदावन को वृंदा देवी ने सजावट किया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करके और क्या विशेषता है कि ऐसे ही नहीं जा रहे हैं, कुछ वर्णन करते हुए जा रहे हैं, बेणू बजाते हुए जा रहे हैं, तन्मयता के साथ आनंद में सखाओं के साथ में वृंदावन में वेणु वादन करते हुए प्रवेश किए और प्रवेश करके वृंदावन को बहुत सुख दिए और सबको प्रसन्न किए, कोयल को, कोयल पशु पक्षी सबको और अपने सखाओं को। और इसके बाद बलराम जी के साथ भगवान स्वयं अपने विषय में अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। यह शास्त्रों में निंदा माना जाता है कि अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना, लेकिन भगवान बलराम जी के संबंध से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे इस संसार में कोई
अपनी प्रशंसा कर रहे हैं कि उन वृक्षों की कर रहे हैं, पक्षियों की।
जैसे एक पिता जैसे एक पिता अपने किसी से परिचय देता है तो वह कहता है कि यह आपका ही धन है, यह आपका घर है, यह आपके बच्चे हैं, तो अपना अपना डायरेक्ट परिचय नहीं देता है। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण इन पशु पक्षियों के द्वारा बलराम जी के माध्यम से कि ये सब आपका स्वागत कर रहे हैं, अर्थात मेरा स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि वृंदावन के जो स्वामी मैं हूँ और सब सेवक हैं। तो इस तरह से महान लोगों की महानता है। भगवान इसी प्रसंग में भगवान थक जाते हैं, बलराम जी की सेवा करते हैं, तो इस प्रसंग में सेवा की महिमा का वर्णन महाराज जी ने किया कि किस तरह से एक शिष्य को गुरु की सेवा करनी चाहिए, पुत्र को पिता की सेवा करनी चाहिए। इसे हमारा भगवान श्री राम के जीवन का आदर्श उन्होंने स्थापित किया कि भगवान श्री राम किस तरह से अपने गुरु विश्वामित्र जी की सेवा किए सोने के बाद में। तो इस तरह से एक शिष्य का कर्तव्य है अपने गुरु के मनोभाव को जान करके उसके इच्छा के अनुसार, उसके इच्छा में अपनी इच्छा को सन्निहित करके,
गुरु की इच्छा न हो तब भी सेवा कर,
तभी
गुरु की थोड़ी इच्छा हो कि हमारे चरण दबाए।
बार बार मुनि आज्ञा देनी रघुबर जाय सैन्य तब के नी। बार बार भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी ने आज्ञा दिया तब जाकर सैन्य के, ऐसे नहीं केवल फॉर्मालिटी नहीं निभाए। आजकल तो दिखावा होता है, वास्तविकता तो कहीं और होता है, लेकिन फॉर्मालिटी होती है, लेकिन भगवान में ऐसी नहीं। भगवान का अवतार शिक्षा के लिए हुआ था, मर्त्यावतार शिक्षणम। भगवान ने शिक्षा दिया किस तरह से एक शिष्य को, एक पुत्र को अपने माता पिता या गुरु की सेवा करनी चाहिए। उसको फर्स्ट क्लास के शिष्य या पुत्र कहा जाता है जो गुरु को मनोभाव को समझ करके सेवा करता है, और जो कहने पर करता है वो सेकेंड क्लास का है, और जो इच्छा नहीं है फिर भी कहता है करता है भार मान करके थर्ड क्लास का, और जो कहने पर भी नहीं करता है वो माता पिता का या गुरु का वो शौच और पेशाब है। हाँ, ऐसा शास्त्र में भागवत में भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के सेवा के द्वारा हम लोगों को शिक्षा दिया।
तो भागवत कराने वालों को भी कुछ थैंक दीजिए।
भागवत कराने वाले के तो सब लोगों ने प्रशंसा किया, लेकिन कल हम लोगों ने चैतन्य महाप्रभु के मुख से सुना था कि जब जब प्रताप रुद्र पर कृपा किए तब तो कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कम सापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गिलंती ते भूरिदा जना। तो इस संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है? भूरिदा, जो कृष्ण कथा का दान करता है वह सबसे बड़ा भूरिदा है। तो सबसे बड़ा भूरिदा कौन है? चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने अवतार लेकर के प्रेम भक्ति का दान दिया, जो गोलोक में छिपा कर रखे थे अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलो, उन्होंने छिपाए हुए गुहतम गोपनीय रस को, महाभाव को अवतार लेकर के जन जन में सभी जीवों को पान कराया। तो सबसे भूरदावे हैं, नमो महाबदान्याय। कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाले ये सबसे बड़े भूरदा हैं। इस संबंध से देखा जाए तो महाराज ये सबसे बड़े भूरदा हैं।
बड़े बड़े भूरदा कैसे भूरदा कह सकते बड़े?
क्योंकि इनका काम ही है संसार में सभी जीवों को कृष्ण रस पिलाना, इनके कोई दूसरा काम नहीं है संसार में। मोहत लोग किस लिए घूमते हैं? भागवत में है अनुग्रहाय, जीवों पर कृपा करने के लिए, भक्ति का दान करने के लिए, जीवों को भक्ति में लगाने के लिए, भागवत रस को पिलाने के लिए। तो दूसरी भूरदा कौन है? जो इस कथा सुनने के लिए जो व्यवस्था करते हैं, सुंदर मंच सजाना, अरे बृंदादेव जी सजाई वैसा ही कथा के लिए यहाँ के भक्तों ने मंच को सजाया है। किस लिए? इसमें कोई दिखावा नहीं है, वास्तविकता है। कथा के लिए, भगवान के कथा के लिए, जैसे संसार में विवाह शादी होता है तो लोग बहुत सुंदर ढंग से मंडप सजाते हैं, तो इसी तरह से ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्तों ने धन लगा करके और इसकी शोभा बढ़ाया है। इसलिए इस तरह के जो आयोजन करने वाले हैं, इसमें जो धन संपत्ति लगाए हुए हैं, लगाते हैं, जो सेवा कर रहे हैं, किसी भी तन मन धन शरीर से वाचा कर्मणा मनसा, तो सब ये भूरिदा हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। कहीं सुनहीं अनुमोदन कर रहे हैं। आज हम लोग भागवत का अनुमोदन कर रहे हैं, यदि कोई वाणी से कहता है ये भी ठीक है, धन संपत्ति देता है वो भी भूरिदा है, और मन से भी अनुमोदन करता है कि यह काम अच्छा हो रहा है, श्रृणवंती गायंती गिणंती अभिक्षण सा, तो वो सब भूरिदा हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ, समय अधिक हो गया है, सबके चरणों में प्रणाम करते हुए महाराज जी के चरणों में और जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव के, हमारी हिम्मत ही भगवान कथा में लगी रहे, क्योंकि ये संसारिक जीव हैं, इसमें काम करो तो लोभ भरा रहता है, कथा सुनने के बाद दूर होता है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद फिर संसार के जो माया है वो हावी हो जाती है, तो यह वैष्णव कृपा से ही सुलभ हो सकता है। हरे कृष्णा।
ब्रजेंद्र नंदन प्रभु की।
तो श्याम सुंदर प्रभु अब शाम को कहेंगे, बहुत देर हो गई, शाम को भी कुछ चलेगा थोड़ा सा। ठीक, ध्रुव दास जी का भी है। आप बोलेंगे ना अनुमोदन? अच्छा, शाम को। ठीक, नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने, नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो चैतन्य महाप्रभु भक्तों को विदा कर रहे हैं कार्तिक उत्थान द्वादशी के बाद, उसे उपलक्षण समझना चाहिए। कुछ कुछ भक्त रथ यात्रा के बाद चले गए, कुछ रह गए बहुत काल तक, कुछ जन्माष्टमी देख करके गए, और कुछ भक्त कार्तिक शुक्ला द्वादशी के बाद गए। तो जो लोग कार्तिक शुक्ला द्वादशी के बाद गए उन भक्तों का यहाँ नाम कह रहे हैं, और किस गांव के, तो चैतन्य महाप्रभु ने सबको कहा, शिवानंद सेन को यह कहा कि आप मुकुंद का पोषण करते रहिए। तो अब कहे कि प्रति वर्षे आमर सब भक्त गण लैया गुंडी चाय आशीवे सबाय पालन करिया। शिवानंद सेन जी वो बंगाल के सभी भक्तों को लेकर के आते थे, वही सबका समाधान करते थे, व्यवस्था करते थे रास्ते में। तो उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि प्रति वर्ष आमार सब भक्त गण लैया, आप प्रति वर्ष मेरे भक्तों को लेकर आइएगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने श्रीमुख से कहते हैं आमार भक्त गण लैया, आमार मेरे भक्तों को लेकर के आइएगा। हरे 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 राम हरे राम। तो प्रतिवर्ष मेरे भक्तों को लेकर के आप आइएगा गुंडीचा मंदिर में अर्जन करने से पहले। कुलीना ग्रामेर कहे सम्मान करिया प्रत्यब्द आशीवे यात्रा पट डोरी लैया। कुलिया ग्राम के वैष्णवों को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि प्रतिवर्ष आइएगा रथ यात्रा में सब लोग जगन्नाथ जी के लिए पट डोरी आदि लेकर के। गुणराज खान कैलो श्री कृष्ण विजय तहाँ एक वाक्य तार अच्छे प्रेममय। गुणराज खान ने एक पुस्तक लिखा है जिसको श्री कृष्ण विजय कहते हैं। ये दशम स्कंध का और एकादश स्कंध का अनुवाद है। यद्यपि कविता की दृष्टि से यह ग्रंथ बहुत श्रेष्ठ नहीं है लेकिन भक्ति की दृष्टि से यह लवालब रसमय ग्रंथ है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नंद नंदन कृष्ण मोर प्राण धन यही वाक्य बिकायनु तार वंशर हाथ। उनका कुलिया ग्राम के थे गुणराज खान। उन्होंने कहा कि गुणराज खान ने लिखा है श्री कृष्ण विजय में कि यही भावे बंद हरि जोड़ करी हाथ नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। एक प्यार लिखा है इसमें कि इस भाव से हाथ जोड़ करके कृष्ण की वंदना करो। और फिर वो लिखते हैं गुरुराज खान उसके बाद नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। चैतन्य महापुरुष कहते हैं उनके इस एक वाक्य से मैं उसके हाथ बिक चुका हूं। एक बार नंद नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ इतना सुंदर बात है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि उनके केवल इस वाक्य से ही मैं उनके हाथ में बिक चुका हूं। तबे रामानंद अर सत्य राज खान प्रभु र चरण किछु कैला निवेदन। आगे आगे बाकी रहे तुमार की कथा तुमार ग्रामे कुकुर सेई मोर प्रिय अन्य जन रहु दूर। भगवान चैतन्य प्रभु ने कहा कि कुलीन ग्राम के कुलिया ग्राम के सभी लोग मुझे बहुत प्रिय हैं। अरे और की तो बात छोड़ दीजिए मनुष्य भक्त कितने प्रिय हैं वहां का एक कुकुर भी मुझको बहुत प्रिय है। तुम्हारा की कथा तुम्हार ग्रामेर कुकुर सेई मोर प्रिय अन्य जन बहुदूर रहुदूर। उस गांव का एक कुत्ता भी मुझे बहुत प्रिय है। तबे रामानंद आर सत्यराज खान प्रभु र चरण किछु कैला निवेदन। तो सत्यराज और रामानंद राय ये लोग आकर के चैतन्य महाप्रभु के चरण में कुछ निवेदन किए। गृहस्थ विषयामी की मोर साधने श्रीमुखे आज्ञा कर प्रभु निवेदी चरणे। तो रामानंद राय और सत्यराज खान जिन्होंने ग्रंथ लिखा है वो आकर के कहे चैतन्य महापुरुष से गृहस्थ विषयामी की मोर साधने हम एक गृहस्थ हैं विषयी हैं माया में बंधे हुए हैं हमारे लिए साधन बताइए कृष्ण को पाने के लिए। तो श्रीमुख से आज्ञा दीजिए किसी दूसरे द्वारा मत कहलवाइए आप डायरेक्ट आज्ञा दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। प्रभु कहें कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। बस सारे उपदेशों का सार हो गया। प्रभु ने कहा कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवन और निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन, तो इसमें दो तो समझ में आ रहा था, कृष्ण सेवा करना ये समझ में आ रहा था, कृष्ण के श्री विग्रह की सेवा और तरह से सेवन, और निरंतर नाम संकीर्तन कीजिए, नाम जप कीजिए, नाम कीर्तन और वैष्णव सेवन कीजिए। तीन गृहस्थों के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु तीन चीज बताए, कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवन और निरंतर नामोच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सत्यराज ने पूछा, फिर सत्यराज बोले वैष्णव चीनी व के मन है के वैष्णव कह तार सामान्य लक्षण है। ठीक है, वैष्णव की सेवा करनी है तो वैष्णव को कैसे पहचानेंगे, कैसे चिन्हेंगे, उसका सामान्य लक्षण बताए जिसे देख करके समझ में आ जाए कि ये वैष्णव है, उसकी सेवा करेंगे। प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण शब्द निकले, एक बार भी कृष्ण, प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार, वो पूज्य व्यक्ति है और सबसे श्रेष्ठ है, मतलब नाम नहीं लेने वालों में से सब वो उन सबसे श्रेष्ठ है, अथवा वैष्णवों में वो श्रेष्ठ है जिसके मुख से एक बार भगवान का नाम आ रहा है। ऐसे वो जपता रहता है, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति, कोई गृहस्थ एक बार भी किसी के नाम मुख से नाम सुने तो उसी की पूजा करनी चाहिए, वो बहुत श्रेष्ठ। चैतन्य महाप्रभु इस तरह से बोलते हैं वैष्णव की परिभाषा। आजकल लोग कहते हैं ये गुण होना चाहिए, ये गुण होना चाहिए, ये गुण होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया कि एक बार भी कोई नाम बोला, भले पहले ना बोलता हो या बाद में भी हो सकता है ना बोले, और एक बार भी बोल दिया तो वैष्णव। ये अद्भुत परिभाषा है भगवान चैतन्य महाप्रभु की। और ये बात करते हैं, कह रहे हैं कि प्रभु कहे जार मुखे सुने एक बार कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण का नाम जपने वाला, नाम कीर्तन करने वाला ही वैष्णव है, इसे संदेह में नहीं पढ़ना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जो नाम जप करता है, भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है, वही वैष्णव है, वो बहुत श्रेष्ठ है। अहो बतस्व पचोतो ना, अहो बतस्व पचोतो गरी अंजिवाग्रे वर्तते नाम तुभ्य तेपुष तपस्ते जहूस अस्मराजा ब्रह्मा नचुर नाम गृणंती। कई शास्त्र का उदाहरण दिया उन्होंने, माता देवहूति जी कहते हैं एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय क्षय, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नव विधा भक्ति पूर्ण नाम हेते है। एक कृष्ण नाम एक बार उच्चारण किया जाए अथवा सुना जाए तो वह एक बार का उच्चारण किया हुआ कृष्ण नाम सर्व पाप क्षय कर देता है। अनंत अनादि काल से जो भी पाप हुआ है जीव से, किसी भी योनि में कई प्रकार से रच रच करके पाप किया हो, सारा पाप एक नाम बोलने से या सुनने से नष्ट हो जाएगा। किसी किसी को आश्चर्य होगा कि क्या चैतन्य महाप्रभु इतना भावुकता में बोल रहे हैं, वो भावुकता में नहीं बोल रहे हैं, वो तो स्वयं भगवान हैं, जो वस्तु स्थिति है उसको बोल रहे हैं। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, जैसे उदाहरण दिया जाता है, मान लीजिए किसी कमरे में कई लाख वर्ष से डार्कनेस अंधकार भरा हुआ है और कदाचित वहां पर प्रकाशशील वस्तु लाई जाए, जैसे बिजली की व्यवस्था करके और उसमें स्विच भी लगा दिया जाए, तो स्विच ऑन करते ही अंधकार ये नहीं कहेगा कि मैं कोटि साल से यहां था, मैं जल्दी नहीं जाऊंगा, तुम करोड़ वर्ष से हो या एक दिन से हो। अब जब अंधकार का विरोधी तत्व प्रकाश आ गया तो उसको भागना ही है, ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत काल से इसमें डेरा डाला था, मैं धीरे धीरे भागूंगा, नहीं। लाइट ऑन होते हैं उसको भागना है। इस तरह भगवान का नाम जो है वो भगवत स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है पूर्ण। किसी भाग्यवान जीव के जिह्वा पर आने पर या कान में आने पर उसके सारे पापों को नष्ट कर ही देता है, जैसे लाइट अंधकार का नाश कर देता है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नौ विधा भक्ति पूर्ण नाम है ते है। भगवान के चरण कमलों में जो नौ प्रकार की भक्ति की जाती है, नौ धा, वो केवल नाम के उच्चारण से पूरी हो जाती है। नाम ही सबसे श्रेष्ठ है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, नवधा भक्ति में भी नाम संकीर्तन ही सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सुलभ है। जीव का जन्म जन्म का साथी कहीं भी, घर में, ऑफिस में, या कार में, बस में, स्कूल में, कहीं भी वही साथ रहता है। भगवान का नाम ही साथ रहता है, भगवान अपने नाम के रूप में साथ रहते हैं। तो नवधा भक्ति भी पूरी होती है नाम संकीर्तन से। भगवान की पूजा कर रहे हैं वो सब भी भगवान का नाम उच्चारण करने से ही पूरा होता है। दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्श या चंडाल सबारे उद्धार। तब कोई यह प्रश्न करे, ठीक है नाम उच्चारण करेंगे तो उसके पहले दीक्षा ले लेनी चाहिए, या नाम उच्चारण करने से पहले मंगलाचरण करना, कुछ पूजा पाठ करना, इसको पुरश्चर्या कहते हैं। किसी क्रिया के पहले जो काम किया जाता है उसको पुरश्चर्या कहते हैं। तो नाम लेने के पहले क्या ये सब चीज जरूरी है? चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं, दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्श आज चंडाले सबारे उद्धारे। कोई जरूरत नहीं है कि इसके लिए पुरश्चर्या की जाए या दीक्षा ली जाए, केवल जिह्वा के स्पर्श से चंडाल तक को ये परम पवित्र कर देता, सबको पवित्र कर, सबारे उद्धारे। इसमें विधि क्या है सबसे बड़ी? जिह्वा से टच करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसको पूरा करने के लिए ये कोई दूसरी विधि है ही नहीं, बल्कि यह सबकी कमी को पूरा करता है। अब यज्ञ कीजिए, तप कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, सब कीजिए, जो भी कमी रह गई वो हरे कृष्ण कहने से पूरी हो जाएगी। तो दूसरों की कमी को ये पूरा कर रहा है तो इसकी कमी को कौन पूरा करेगा? इसमें कोई कमी है ही नहीं। अब जैसे सूर्य प्रकाश दे रहा है, अखंड अशेष प्रकाश बिखेर रहा है सारे जगत में, तो सूर्य को कौन प्रकाश देगा? और उसके प्रकाश की जरूरत क्या है? कोई ऐसा थोड़े है कि अब सूर्य उगने वाला हो तो उस दिन लाइट की व्यवस्था की जाए कि सूर्य को ठोकर ना लगे, दिखाओ लाइट आ रहे हैं, उग रहे हैं। सूर्य को दीपक दिखाना, सूर्य को लाइट, टार्च, बल्कि बहुत बड़ा टार्च लेकर के और व्यवस्था की जाए कि भगवान सूर्य भाई रात्रि में भटक ना जाए, उनको लाइट दो, उनको दीपक दिखाओ। ये भगवान का नाम साक्षात भगवान है, साक्षात कृष्ण है, इसके उच्चारण से ही सारी कमियां पूरी हो जाती हैं। और इसको पूरा करने के लिए, इसको सांगोपान पूरा करने के लिए दूसरा क्या किया जा सकता है? कभी कभी कुछ लोग बहुत ही भावुकता से बोल देते हैं, देखो जब तक दीक्षा नहीं लोगे तो पहले का किया हुआ नाम जब सब काउंट नहीं होगा, कंसीडर नहीं होगा। बाप रे, जब दीक्षा लेकर के बिजली का तार छुएंगे तब करंट मारेगा? अब जरा विचार कीजिए, बिना दीक्षा वाले छुए उनको नहीं करंट मारेगा। जो वस्तु शक्ति है वो भाव की अपेक्षा नहीं रखती है, भाव कुछ भी हो। यदि एक बच्चा किसी ईंधन पर अग्नि को फेंक दे या आग को छुए, छोटे बच्चे को अग्नि के धर्म का स्वभाव का ज्ञान नहीं है कि छूने पर जलाएगा, तो क्या अग्नि कभी विचार करता है कि बेचारा भोला भाला बच्चा है, इसको नहीं जलाना चाहिए? कुछ भी भाव हो, तुम अनजान में छुओगे फिर भी मरोगे, जलोगे। जब अग्नि अपना स्वभाव या अपनी प्रकृति को छोड़ नहीं पाता है, विद्युत अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता है, विष अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता है, तो भगवान का स्पिरिचुअल चिन्मय नाम अपने स्वभाव को कैसे छोड़ेगा? वो क्यों अपेक्षा करेगा? अमृत उठा करके रखा हुआ कहीं रखा हुआ है और अमृत को कोई पानी समझ करके पी जाए, तो पानी समझ करके पिए चाहे दूध समझ करके पिए या अमृत समझ करके पिए, पीने वाले को तो अमर करेगा ही, वो ऐसा नहीं सोचेगा कि हमारे गुण को जान करके पिया है तब इसको फायदा करना चाहिए। कभी कभी बच्चे दूध नहीं पीना चाहते हैं, दवा नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन दवा उनके पेट में जाती है तो अपने असर करती है, भाव उनका कुछ भी हो तो खाना ही नहीं चाहते, बल्कि कितने बच्चे तो दूध पी करके उल्टी करने लगते हैं, पीना नहीं चाहते, अब माँ थप्पड़ तानते हैं पियो पियो पियो, तो उनके पेट में जाने पर दूध है गुणकारी होता है, असर करता है। इस तरह भगवान का नाम चाहे कोई श्रद्धा से ले या अवहेलना से ले या किसी पद को पूरा करने के लिए ले या किसी वस्तु के बदले में ले, उसका पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जैसे रमानंदी संप्रदाय में लवण को, नमक को राम रस कहते हैं। कोई व्यक्ति अगर कुछ भी भजन न करे केवल मांग दे एक बार कि राम रस दो, उसी में सारा पाप ध्वस्त हो गया उसका। नमक के लिए बोला राम रस, जैसे अजामिल अपने बेटा के लिए नारायण कहा था, लेकिन नारायण उसके बेटा का नाम थोड़े है, नारायण तो भगवान का नाम है अनादि काल से, तो उसको मुक्त कर दिया। तो इस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नव विधा भक्ति पूर्ण नाम हैते हैं, दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा न करे, जीवा स्पर्श आ चंडाले सवारे उद्धारे। यहाँ तक कि भगवान की जो कथाएं हैं भागवत में कहीं भी, यदि उसमें से भगवान का नाम निकाल दिया जाए तो कथा मरी हुई माने जाएगी। इसीलिए कथा की महिमा है कि इसमें बारंबार भगवान का नाम आया है, प्रत्येक श्लोक में प्रत्येक पद में, नाम द्वारा ही ये पूरा होता है, इसको कोई पूरा नहीं कर सकता। नाम साधन राज है, वास्तव में सबसे श्रेष्ठ साधन। दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्शे आ चंडाले सवारे उद्धारे। श्रील प्रभुपाद जी बहुत विस्तार से इस पर रिपोर्ट लिखे। अनुसंग फले करे संसार रक्षय, चित्त आकर्षिया कराए कृष्ण प्रेमोदय। वैसे संसार का क्षय जन्म मरण तो आनुषंगिक फल के रूप में हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति चावल चाहता है या धान का पौधा लगा रहा है, तो उसमें पशुओं के लिए पुआल, पुआल कहते हैं इधर, क्या कहते हैं पुआल, तो पुआल अपने आप हो जाता है और चावल उत्पन्न होता है, तो चावल वो खाएगा, पकाएगा, बेचेगा, लेकिन भूसी उसमें अपने आप हो जाती है। कर्म बंधन मिट जाना, मुक्त हो जाना, तो भूसी जैसा अपने आप हो जाएगा, इसको अनुसंगिक फल कहते हैं। मुख्य फल है कृष्ण में प्रेम उत्पन्न होना, ये नाम ही देता है भगवान कृष्ण में प्रेम, और अनुसंगिक रूप से संसार का क्षय कर देता है। आकृष्ट ही कृतचेत साम सुमन साम उच्चाटनम चांग साम। भगवत भक्तों के, पुण्यात्मा पुरुषों के चित्त को यह आकृष्ट करता है, उनके चित्त में आनंद का समुद्र भर देता है, और उच्चाटनम चांग हसाम, और पापों की पूरी सफाई कर देता है, खत्म कर देता है। आ चंडाल ममूक लोक सुलभ हो, और यह सबके लिए सुलभ है, चंडाल तक के लिए सुलभ है। आ चंडाल ममूक लोक सुलभ, और मूक व्यक्ति के लिए भी अमूक, मूक को छोड़ करके, एक गुंगे को छोड़ करके कोई भी इसको बोल सकता है, इसके बोलने में गुण ही गुण है, कोई दोष नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, आप ऐसा बनकर के तब नाम बोलो, तुम्हारा अधिकार नहीं है नाम बोलने का, ये बोलने का, ये मंत्र बोलने का, महामंत्र बोलने का किसी को भी स्वरूप सिद्ध अधिकार है। हाँ एक ही बात है कि जो मूक व्यक्ति है वो बेचारे नहीं बोल पाएगा, वो चाहे ब्राह्मण हो चाहे चंडाल हो चाहे कोई हो, लेकिन कितना भी पतित हो कितना भी गिरा हो किसी भी दशा में हो उसको भगवान के नाम लेने का अधिकार है, वो सुलभ है नाम उसके लिए और उससे उसका हित होगा। आचंडाल मूक लोक सुलभ हो वश्यश्च मुक्ति श्रेय। और भगवान ने के नाम के अधीन ही है मुक्ति श्री, मुक्त होना, भगवान का पार्षद बनना है, संसार बंधन खुलना। नो दीक्षा न च सत्क्रियाम न च पुरश्चर्या मनाग इच्छते, कोई दीक्षा की जरूरत नहीं इसमें। कोई यज्ञ आदि करने के लिए दीक्षा लेना पड़ता है, ये नियम वो नियम ये पालन करो ये पालन करो, नहीं, भगवान के नाम में इसकी कोई अपेक्षा नहीं। करे कोई ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि दीक्षा लेने से तब नाम फल देगा। न च सत्क्रियाम न च पुरश्चर्या मनाग इच्छते, और न तो शुरू में ये कलश स्थापन करके तब जप करो या ये करो वो करो हवन करके करो, कोई जरूरत नहीं। मंत्रो अयम रसना स्पृशेग फलती, मंत्रो अयम रसना स्पृगे व फलती श्री कृष्ण नामात्मक, यह मंत्र यह महामंत्र जो कृष्ण नामात्मक है या कृष्ण के नाम वाला कोई भी मंत्र रसना स्पृक एव फलते, केवल जिह्वा से स्पर्श हो जाए और अपना पूरा फल दे देता है। फलते कृष्ण नामात्मक, कृष्ण का नाम केवल जिह्वा से टच होना चाहिए वो पूरा पूरा फल देता है। ये सब भगवान का प्रेम देता है, मुक्ति देता है, सब कुछ दे देता है। अतएव जार मुखे एक कृष्ण नाम सही तब वैष्णव करिहता हर सम्मान, तो भगवान सिखा रहे हैं। इसीलिए जिस व्यक्ति के मुख पर एक नाम भी सुनो कभी तो समझो ये वैष्णव है और उसका सत्कार करो उसका आदर करो। खंडेरा मुकुंद दास श्री रघुनंदन श्री नर हरि यही मुख्य तीन जन, और खंड ग्राम से आए हुए मुकुंद दास श्री रघुनंदन और नरहरि ये तीन मुख्य जन हैं। मुकुंद दासेरे पूछे सचिरानंदन तुम्ही पिता पुत्र तुम्हार श्री रघुनंदन किवा रघुनंदन पिता तुम्ही तार तनय निश्चय करिया कह जाऊ का संशय। मुकुंद दास उम्र में बड़े थे रघुनंदन की अपेक्षा, तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं मुकुंद तुम रघुनंदन के पिता हो कि रघुनंदन तुम्हारे पिता हैं। अजीब आश्चर्य जैसे पूछते लोग, विनोद कर रहे हैं एक शिक्षा देने के लिए, तुम मुकुंद के पिता हो कि मुकुंद तुम्हारे पिता है? नहीं, और मुकुंद से पूछे कि तुम रघुनंदन के पिता हो कि श्री रघुनंदन तुम्हारा पिता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के कहने का मतलब था कि कौन प्रीच किया कौन भक्त बनाया, तो जो प्रीच किया भक्त बनाया वो पिता के समान है, भले उम्र कुछ कम हो या कुछ भी हो। पहली बार कृष्ण के बारे में जो बताया सिखाया तो वही पिता है। मुकुंद से पूछते हैं कि तुम रघुनंदन के पिता हो कि रघुनंदन तुम्हारे पिता है? किवा रघुनंदन पिता तुम्ही तार तना निश्चय करिया कह जाओ, हमको संशय हो रहा है। संशय क्या हो रहा है, बड़े उम्र के व्यक्ति से पूछ रहे हैं वो तुम्हारा पिता है कि तुम उसके पिता हो, और उल्टे कह रहे बहुत मुझे संशय है कि कौन पिता है। संशय क्या, तो संशय इस बात का था कि वास्तव में पहले भक्ति कौन चालू किया और कौन उसको भक्त बनाया, परस्पर क्या किया। मुकुंद कहे रघुनंदन मोर पिता है, मुकुंद जो बड़े उम्र के थे उन्होंने रघुनंदन के विषय में कहा यही हमारे पिता है, अमितार पुत्र ही हमारा निश्चय, इसमें संदेह नहीं है प्रभु मैं इनका पुत्र हूँ, अरे हमारे पिता है। जिस भक्त ने प्रथम बार कृष्ण का ज्ञान दिया कृष्ण के प्रति लाया भक्ति बढ़ाया तो वो वास्तव में पिता है। तो यही हमारे पिता है, रघुनंदन हमारे पिता है, ये निश्चय करके बता रहा हूँ। आमा सबर कृष्ण भक्ति रघुनंदन है ते, अतएव पिता रघुनंदन हमारा निश्चय। हम सब में जो भी श्रीखंड गांव में, खंड गांव में जो भक्ति कर रहे हैं भक्त, चाहे उस क्षेत्र में, सबको रघुनंदन ने सिखाया है। अमा सवार कृष्ण भक्ति रघुनंदन है ते, अतः वो पिता रघुनंदन हमारा निश्चित, इसीलिए मैंने निश्चित किया है यही हमारे पिता है। सुनी हर से कहे प्रभु कही ले निश्चय, जहा है ते कृष्ण भक्ति से ही गुरु है। ठीक कहा, बहुत अच्छा कहा। जिससे कृष्ण भक्ति होती है वही गुरु है, गुरु का अर्थ श्रेष्ठ और स्पिरिचुअल मास्टर भी। तो स्पिरिचुअल मास्टर को तो ऐसे तो मैटेरियल मास्टर के अलावा, मैटेरियल मास्टर तो बहुत हैं, किसी कंपनी में कोई काम कर रहा है तो कंपनी का मालिक भी मैटेरियल मास्टर है, और भी कई मैटेरियल मास्टर हैं, लेकिन भक्ति सिखाने वाला व्यक्ति स्पिरिचुअल मास्टर। स्पिरिचुअल मास्टर इन्हें वो बाप भी है, वो पिता है, भगवान ऐसे करेगा, ऐसे सम्मान करना चाहिए। जहाँ है तो कृष्ण भक्ति से ही गुरु है। भक्तेरा महिमा प्रभु कहते पाए सुख, भक्तेरा महिमा कहते है पंचमुख। भक्तों की महिमा कहने में चैतन्य महाप्रभु को बहुत सुख मिलता था, और किसी भक्त की बड़ाई करते थे, उसकी महिमा गाते थे, तो ऐसा लगता था जैसे उनको पांच मुख हो गया है, एक मुख से ही पांच मुख का काम लेते थे, बहुत महिमा गाते थे। ये सीखना चाहिए वास्तव में, परस्पर भक्तों की बड़ाई करना बहुत आवश्यक। भक्तों की महिमा गाने से लोक में भक्तों का आदर होता है, लोग कृष्ण की बात सुनते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं। भक्तेर महिमा कहते है पंचमुख, भक्त गणे कहे सुना मुकुंदर प्रेम, निगुढ़ निर्मल प्रेम जिन दग्ध हैं। अब मुकुंद के प्रेम को बता रहे हैं, भक्त गणे कहे सुनो मुकुंद रे प्रेम, सुनिए मुकुंद का प्रेम, भक्तों से कह रहे हैं इसका प्रेम कृष्ण के प्रति निगूढ़ है और निर्मल है, जेन दग्ध हेम, तप्त स्वर्ण के समान इसका शुद्ध प्रेम है। जैसे वही हेम को, सोने को जलाया जाए तो उसकी गंदगी सब जल जाती है, सोना चमकने लगता है, तो इस तरह से इसके हृदय में कोई दूसरी कामना नहीं है, ये छिपा हुआ इसका प्रेम है, लेकिन शुद्ध सोने के समान इसका प्रेम है। बाहे राज वैदई हो करे राज सेवा, अंतरे कृष्ण प्रेम ही हर जानिबे ककेवा। यह राज वैद्य है, राज वैद्य में तो राजा का डॉक्टर, राजा का वैद्य, राजा की सेवा करता है, लेकिन अंतर में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है इसका, कौन जानेगा इसको। एक घटना द्वारा बता रहे हैं, एक दिन अम्लेच्छ राजर उच्च टुंगीते, चिकित्सार बात कहे ताहर अग्रेते। एक दिन म्लेच्छ राजा, एक मुसलमान राजा जिसके यहाँ ये काम करते थे, ऊंचे टुंगी पर बैठा था, टुंगी का अर्थ होता टीला, एक ऊंचे टीला पर बैठा था, टीला के ऊपर फिर आसन लगा लिया था, जो भी खाट चाहे जो भी, तो चिकित्सार बात कहे तहार अग्रे थे। तो मुकुंद चिकित्सा के विषय में उससे बात कर रहे थे, उसको देख रहे थे, चेकअप कर रहे थे, या कोई भी चिकित्सा की बात कर रहे थे। हे न काले एक मयूर पूछे आड़ानी, राजसिर परिधरे एक सेवकानी। उसी समय क्या हुआ, कुछ मुसलमान राजा के, राजा मुसलमान राजा का एक सेवक आया, तो मोर पंख ले करके आया, जैसे छत ये व्यजन होता है ना, पंखा झलते हैं, तो राजा बैठा था, घाम आ रहा था, तो राजा का सेवक मोर का पंखा ले करके आया और ऐसे राजा के सिर पर आड़ किया उसे, वो पंखे के रूप में मोर था, लेकिन मोर पंख को देखते ही मुकुंद मूर्छित होकर के और उस टीला से नीचे गिर गए, मोर पंख देख करके। बाहर से तो एक डॉक्टर थे, वैद्य थे, राजा की सेवा करते थे, लेकिन भीतर कितना कृष्ण प्रेम छिपा था। सिखी पिछ देखी मुकुंद प्रेमाविष्ट हैला, अति उच्च टुंगी है ते भूमि ते पड़ीला। वो अति उच्च टीला था, वहां से भूमि पर गिर गए, नीचे गिर गए। मोर पंख देखते ही तो राजा ज्ञान राज वैदर है लंबा रहा। राजा तो सोचा कि ये तो डॉक्टर आज गया इस दुनिया से, ये तो मर गया, दूसरों की चिकित्सा करता है, अब इतना ऊंचा से गिरा तो मरा होगा। तो राजा ज्ञान राज वैदर है लमरण आपने नामिया तबे कराई लचेतन, स्वयं वहां से उतर करके और आकर के संभालने लगा राजा मुकुंद को। तो कराई लचेतन किसी तरह से चेतन हुआ। राजा बोले व्यथा तुम्हें पहले कौन ठाई, कहाँ चोट लगा है, कहाँ व्यथा हुई है? वो पूछ रहा था राजा कि कहाँ चोट लगा है, बताओ बताओ। मुकुंद कहे अति बड़ व्यथा पाई नहीं। मुकुंद कहे कोई बहुत बड़ी चोट नहीं लगी है, कोई चिंता की जरूरत नहीं। राजा कहे मुकुंद तुम्हें पड़ी ला की लागी? मुकुंद कहे राजा मोर व्याधि अच्छे मृगी। राजा ने पूछा कि तुम गिरे कैसे, तुम गिरे कैसे? वास्तव में मयूर पंख को देख करके गिरे थे, कृष्ण के प्रेम में आविष्ट हो गए, इतना प्रेम था। लेकिन राजा पूछता है तुम गिरे कैसे, तो ये कहे कि राजा जी हमको मृगी रोग है, कभी कभी मृगी आ जाती है, गिर जाता है। बताइए भगवान कृष्ण के प्रेम मूर्छा को मृगी कह रहे हैं, बहुत छिपाते थे। मुकुंद कहे राजा मोर व्याधि अच्छे मृगी, मुझको एक मृगी मृगी व्याधि है, उससे कभी कभी मैं गिर जाता हूँ। मृगी व्याधि में व्यक्ति कभी कभी गिर जाता है ऐसे में। महाविदग्ध राजा से ही सब जाने, मुकुंद हैलतास महासिद्ध ज्ञान है। तो राजा जैसे भी हो महाविदग्ध था, अष्ट सात्विक विकार के बारे में सुना था, जानता था कि भगवान के प्रेम में ऐसे लोग गिरते हैं, तो जान गया कैसे गिरा। आखिर इसके पहले क्यों नहीं गिरा, जब तक मोर पंख नहीं आया था या किसी दिन नहीं आता था तो ये नहीं गिरता था। क्या मोर पंख के देखते ही मृगी बढ़ जाती है? सोची राजा समझ गया इसका भगवान मोर पंख पहनता है, तो मोर पंख को देख करके उस प्रेम में गिर गया, बेहोश हो गया। महाविदग्ध राजा सही सब जाने, मुकुंदेरा हैला तार महासिद्ध ज्ञान। वो समझ गया कि महासिद्ध है महावैष्णव। रघुनंदन सेवा करे कृष्ण र मंदिर है द्वारे पुरस्करणी तारक घाटे ऊपर। रघुनंदन क्या सेवा करते, कौन ये तीनों क्या क्या काम करते थे? तीनों अपने पहले नाम सुना ना, मुकुंददास रघुनंदन और नरहरी, ये तीन क्या क्या सेवा करते थे, कौन कौन भक्ति करते थे, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। रघुनंदन सेवा करे कृष्ण र मंदिर द्वारे पुष्करणी तार घाटे ऊपर। ये रघुनंदन कृष्ण की सेवा करता है, कृष्ण के मंदिर में रहता है और कृष्ण की सेवा करता है। द्वारे पुष्करिणी तार घाटे ऊपर है, तो द्वार पर ही मंदिर के द्वार पर अथवा इसके घर के द्वार पर पुष्करिणी है, छोटा सरोवर है। तो घाट के ऊपर एक कदम्ब का वृक्ष है, कदम्बेरा एक वृक्ष फूटे बार मास है, नित्य दुई फूल है कृष्ण अवतंस। इसके घर पर कदम्ब का वृक्ष है एक, बारह महीना फूलता है, तो उसमें से दो फूल ये सदा ला करके कृष्ण का अवतंस बनाता है, मुकुट बनाने के लिए देता है। ये अवतंस का अर्थ कान में कुंडल जैसा प्रस्तुत करता है, अवतंस माने मुकुट श्रृंगार। नियम था बारहों महीना कदम फूलता था, वो अद्भुत कदम था, और उसमें से दो फूल नित्य ला करके सेवा करता था। ये सेवा तो मंदिर में रहता था वो भक्त, और भगवान कृष्ण की सेवा में हमेशा लगा रहता था, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो मुकुंदेर कहे पुनः मधुर वचन, तुम्हार कार्य धर्म धन उपार्जन। उनको कहे कि ठीक है ये तो मंदिर में सेवा करता है बहुत अच्छा है, और मुकुंद से कहे कि तुम्हारा काम है, तुम्हारा धर्म है, धर्म पूर्वक धन उपार्जन करना, तो ठीक है डॉक्टर का वैद्य का काम करो, लेकिन धर्म से करना, अधर्म मत करना। कभी कभी डॉक्टर लोग पूरा धर्म करते हैं, जमराज के ही सहोदर भाई हो, बड़ा भाई हो जाते। एक कविता है संस्कृत में, कवि कह रहा है कि वैद्यराज नमस्तेस्तु जमराज सहोदर, और जमह तू हरते प्राणान वैद्य प्राणान धना नीच। हे जमराज जी के बड़े भाई डॉक्टर साहब, आपको प्रणाम करता हूँ। जमराज जी तो केवल प्राण लेते हैं, लेकिन आप प्राण और धन दोनों ले लेते हैं, इसलिए बड़े भाई। पहले ही लिखवा लेते हैं, फार्म भरवा लेते हैं कि मरेगा तो हम जिम्मेवार नहीं। मर भी जाता है, प्राण भी ले लेते हैं और धन भी ले लेते हैं। जमराज जी तो धन नहीं छूते हैं, केवल प्राण लेते हैं। इसीलिए जमराज के अग्रज है सब डॉक्टर, जितने भरे पड़े आजकल के विशेष करके, जमराज जी इनके छोटे ही भाई हैं, बड़े भाई यही लोग हैं। बहुत महंगा किए हैं दवाई और पढ़ाई। पहले के लोग फ्री पढ़ाते थे बच्चों को, फिर ये धर्म समझते थे, पढ़ा देना पढ़ा देना पढ़ा देना। अब तो बहुत तरह पढ़ाई का फीस लेते, छोटे छोटे बच्चों से दया आनी चाहिए। सब तो अपने ही बच्चे हैं, सोचना चाहिए। तो पढ़ाई और दवाई दो चीज बहुत महंगा हो गया। एक बंगाली भक्त हमसे बता रहा है, महाराज पढ़ाई और दवाई ये दो चीज बहुत महंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद को कहा कि तुम धन उपार्जन करना और उस धन से भगवान की सेवा करना, लेकिन धन का उपार्जन धर्म से करना, अपना जो सही कर्तव्य है। और कोई ज्यादा लूटपाट मत करना, लूटपाट का बिल्कुल मत करना। दवा का दाम ले सकता है देख करके, उस चिकित्सा करके, यदि अपने धर्म के अनुसार वैद्यगिरी की जाए तो वह भी भक्ति है, यदि उस धन से वैष्णवों की और विष्णु की सेवा की जाए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुम्हार कार्य धर्मे धन उपार्जन, रघुनंदनेर कार्य कृष्णेर सेवन, कृष्ण सेवा बिना इहार अन्य नहीं मन। तो रघुनंदन का काम है कृष्ण की सेवा करना, मंदिर में कृष्ण सेवा का अतिरिक्त कुछ नहीं करना। मुकुंद का काम है धन अर्पित करना, धन अर्जन करना। और नरहरि बहु अमर भक्त गण सन यही तीन कार्य सदा कर तीन जन। और नरहरि को कहे कि तुम सब जगह घूम करके प्रचार करो, मेरे भक्तों में कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, कथा कहो और जहां तहां जा करके प्रचार करो, कथा कहो। तीन तीनों को तीन काम बताया भगवान ने। वो लोग भी पूछे होंगे कि हमारा काम बताइए, हमारा काम बताइए। तो पहले तो बताया कि वैष्णव का सेवन करना, कृष्ण की सेवा करना और कृष्ण नाम संकीर्तन करना। तो नरहरि को संकीर्तन के लिए आदेश दिए कि तुम प्रचार करना, कीर्तन गाना। मुकुंद को कहे कि तुम धन अर्जन करना, और रघुनंदन को कहे कि तुम कृष्ण की सेवा करना। ये तीनों काम एक समान है वास्तव में। कहीं भी किसी भी कार्य में, मंदिर चलाने में या प्रचार में धन की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति धर्म पूर्वक धन का संग्रह करता है तो वह भी पुजारी ही है, भगवान की ही वो सेवा कर रहा है। अगर भगवान के लिए पैसा न आवे भोग आदि बनाने के लिए, तो पुजारी अकेले चामर डुला कर क्या करेगा। मान लीजिए उसे भोग लगाने के लिए कुछ ना मिले, तो जो पैसे की व्यवस्था करता है धर्म पूर्वक, तो वह भी मंदिर की में पूजा कर रहा है, कोई अंतर नहीं। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ परपट में लिखते हैं कि चाहे कृष्ण की डायरेक्ट श्री विग्रह की सेवा हो अथवा धन अर्जन कोई करता हो कोई भक्त, अथवा कोई प्रचार कर रहा है, तो तीनों एक है। लेकिन अपने अपने कर्तव्य में रह करके, अपने अपने नियम में रहकर करना चाहिए। सार्वभौम विद्यावाचस्पति दो ही भाई, दुई जने कृपा करी कहे न गोसाई दारू जल रूपे कृष्ण प्रकट संप्रति दर्शन स्नान कर जीवे रमुकुति सार्वभौम और विद्यावाचस्पति ये दो भाई सार्वभौम भट्टाचार्य को ही कह रहा है ना ऐसा लगता है सार्वभौम और विद्यावाचस्पति दो भाई हैं तो दोनों को स्पेशल आज्ञा दे क्योंकि विद्यावाचस्पति विदा हो रहे थे वो जा रहे थे तो दोनों जुटे थे विद्यावाचस्पति को विदा करने के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य आए थे तो भगवान ने कहा चैतन्य अपने सार्वभौम विद्यावाचस्पति दुई भाई दुई जने कृपा करी कहे न गोसाई दोनों से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृपा करके दारू जल रूपे कृष्ण प्रकट संप्रति देखो इस समय दारू ब्रह्म के रूप में और जल ब्रह्म के रूप में कृष्ण साक्षात प्रकट हैं एक दर्शन से कृतार्थ करते हैं और एक स्नान से कृतार्थ करते हैं मतलब जगन्नाथ जी और गंगा जी तो ये सार्वभौम दारू ब्रह्म का साक्षात सेवन करेंगे ये रहेंगे पुरुषोत्तम में दारू ब्रह्म रूपे साक्षात श्री पुरुषोत्तम भागीरथी हन साक्षात जल ब्रह्म सन तो दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी हैं और जल ब्रह्म श्री गंगा जी हैं भागीरथी तो सार्वभौम कर दारू ब्रह्म आराधन और वाचस्पति कर जल ब्रह्मे सेवन तो आप सार्वभौम जी दारू ब्रह्म की आराधना कीजिए जगन्नाथ जी के मतलब इनका दर्शन कीजिए और वाचस्पति जी आप जल ब्रह्म का सेवन कीजिए मतलब गंगा में रोज स्नान गंगा जी की पूजा ये आप कीजिए तो भगवान कृष्ण प्रकट है साक्षात जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म के रूप में भगवान कृष्ण और वह गंगा जी के रूप में प्रकट गंगा जी साक्षात भगवान का स्वरूप मानी जाती तो एक भाई को कहे कि तुम दारू ब्रह्म का सेवन करो पुरुषोत्तम जी का भगवान का और वाचस्पति को कहे कि तुम जल ब्रह्म का सेवन करो हम लोगों को हरिद्वार में बहुत अच्छा सौभाग्य मिलता है कि जल ब्रह्म में गोता मारते हैं और फिर भागवत सुनते हैं कितने भक्त दो बार स्नान करते हैं हरिद्वार में यह शरीर गंगा जी में गोता खाता है उसमें डुबाते हैं और फिर बाद में भागवत अमृत में मन को डुबाते तो अंतः और बाह बिल्कुल शुद्धि हो जाती है सर मुरारी गुप्तेर प्रभु कर करी आलिंगन तार भक्ति निष्ठा कहन सुना भक्तगण फिर मुरारी गुप्त को विदा करने लगे तब कहते हैं सुनिए मुरारी की कैसी भक्ति निष्ठा है कितना बड़ा भक्त है सुने भक्तगण सब सुन रहे थे पूर्वे यामी इहर लोभाई लो बार बार पहले मैं इसको बहुत लोभित किया इसको लुभाया बार बार परम मधुर गुप्त ब्रजेंद्र कुमार तो मुरारी गुप्त भगवान राम के रघुनाथ जी के भक्त तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पहले मैं इसको कई बार कहा कि सुनो ब्रजेंद्र कुमार नंद नंदन परम मधुर हैं परम मधुर सब तरह से परम मधुर हैं स्वयं भगवान कृष्ण सर्वांशी सर्वस्व एक तो स्वयं भगवान छह ऐश्वर्यों से पूर्ण सर्वांशी सबके अंशी हैं सब उनके अंश हैं लेकिन वे परिपूर्ण हैं सबके आश्रय हैं विशुद्ध निर्मल प्रेम सर्वरसमय और विशुद्ध निर्मल प्रेममय है सर्वरसमय है सकल सद्गुण वृंद रत्न रत्नाकर सारे सद्गुण जितना भी अच्छा अच्छा गुण है सद्गुण वो सारा का समूह यदि रत्न है तो उस रत्न के रत्नाकर हैं कृष्ण सारे सद्गुण कृष्ण में हैं विदग्ध चतुर धीर रसिक शेखर विदग्ध हैं चतुर हैं धीर हैं रसिकों में सबसे श्रेष्ठ हैं मधुर चरित्र कृष्ण मधुर विलास चतुर जब वैदग्ध करे जारे लीला रस तो मधुर चरित्र है इनका मधुर विलास है रास आदि विलास चतुर वैदग्ध बहुत चतुर हैं श्रीमद् भागवत में सब चतुराई लिखी गई है चातुर्य वैदग्ध करे उन्हें सारे गुण हैं सारे कलाएं हैं सब कुछ हैं लीला रस और किसी से भी वे प्रेम कर सकते देखो वो इतनी गोपियों को अपनाए और द्वारका में कितनी स्त्रियों से विवाह किए, लेकिन ये तुम्हारे इष्ट देव है राम, ये एक के अलावा दूसरी स्त्री को पूछते ही नहीं है, और एक आई भी विवाह करने तो उसका नाक कान कटवा लिए। तो ये तो सबके उपास्य नहीं है, कृष्ण ही ऐसे हैं जो सबके उपास्य। कोई उनको बच्चा बनाना चाहे तो बच्चा बन जाते हैं, या प्रियतम बन जाते हैं, स्वामी बन जाते हैं, सखा बन जाते हैं, और बच्चों को खेल में हार कर कंध पर चढ़ाते हैं, इत्यादि सब बात तो कह रहे थे। और वो तुम्हारे जो इष्ट देव है राम, उनकी माँ ने, सौतेली माँ ने कह दिया 14 वर्ष वन में जाने को, चले गए। इतना थोड़े भोला होना चाहिए, क्या जाने की जरूरत है। तो सही कृष्ण भज तुम्ही हव कृष्णाश्रय, कृष्ण बिना अन्य उपासना मने नहीं लय। आप कृष्ण का भजन कीजिए, कृष्ण का आश्रय लीजिए, कृष्ण का सेवन कीजिए, कृष्ण के बिना अन्य उपासना में मन मत लगाइए। ऐ मत बार बार सुनिया वचन, अमार गौरवे किछु फिरी गेल मन। जब मैं बार बार कह रहा था, अवसर पाकर कभी कहने लगते थे क्या चक्कर में पड़े हो, भजन करो श्याम सुंदर का, इतना रसमय और सारा समाज ही कृष्ण का भक्त है यहाँ पर। तो यही मत बार बार सुनिया वचन, हमारा गौरव किछु फिरी गेल मन। तो मुझको बड़ा समझते थे, हम कह रहे थे इसलिए थोड़ा सा मन फिर गया इसका, मुरारी गुप्त के सामने कह रहे हैं। हमारे कहे न यामी तुम्हार किंकर, तुम्हार आज्ञाकारी यामी नहीं स्वतंत्र। हमसे इसने कहा कि मैं आपका किंकर हूँ और आपका आज्ञाकारी हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। यदि आप आज्ञा दे रहे हैं कि कृष्ण का भजन करो, राम को छोड़ दो, तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। एता बलि घरे गेल चिंती रात्रि काले, रघुनाथ त्याग चिंता है लिकले। रात में घर पर गए और चिंता में पड़ गए, सोचने लगे रघुनाथ को कैसे छोड़ दूं, भगवान राम को कैसे छोड़ दूं, बहुत विकल हो गए, रोते रोते सवेरा हो गए। के मने छाड़ी बर रघुनाथ र चरण, आज रात्र प्रभु मोर करा मरण। फिर मनाने लगे हे भगवान, हे श्री राम, मैं आपका चरण कमल कैसे छोड़ूंगा, आज रात में मैं मर जाता तो बहुत अच्छा होता, मर जाता तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का उल्लंघन और आपका त्याग दोनों नहीं होते। अगर चैतन्य महाप्रभु की बात नहीं मानता हूं तो ये भी बहुत बड़ा पाप लग रहा था उनको, और वो नहीं समझ रहे थे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु केवल मजाक कर रहे थे, परिहास कर रहे थे परीक्षा लेने के लिए। के मने छाड़ी बर रघुनाथ र चरण, आज रात्र प्रभु मोर कराय मरण। ऐ मत सर्वरात्रि करे न क्रंदन, मने स्वस्थ नहीं रात्रि कैला जागरण। मन स्वस्थ नहीं था, रोते रहे रात भर, रोते रहे और जागरण किए। प्रातः काल आसी मोर धरी ल चरण, फिर प्रातः काल आ करके मुरारी मेरे चरण में गिर गया। कांदिते कांदिते किछु करे निवेदन, और रोते रोते फफक फफक कर रो रहे थे और कुछ कहने लगे। रघुनाथ पाए मुई बेचिया छो माथा, काढ़ी ते ना पारी माथा मने पाई बेथ। हे प्रभु, मैं श्री राम के चरणों में अपना माथा बेच चुका हूँ, अपने को दे चुका हूँ, अब मैं वहां से अपने माथा को निकाल नहीं सकता, मतलब मैं समर्पण कर चुका हूँ भगवान श्री राम, वहां से अब मैं नहीं ले सकता। श्री रघुनाथ चरण, श्री रघुनाथ चरण छाड़ न जाए, तव आज्ञा भंग है कि करूं उपाय। मैं रघुनाथ के चरण को नहीं छोड़ पाऊंगा और आपकी आज्ञा भंग हो रही, उसका पालन नहीं कर रहा हूं, मैं क्या उपाय करूं हमें बताइए। ताते मोरे यही कृपा कर दया मय, तुम्हारा आगे मृत्यु हो जाऊ का संशय। इसलिए आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके सामने मेरी मृत्यु हो जाए। इत सुनियामी बड़ मन सुख पाइनु, इहा रे उठाइए तबे आलिंगन कैनु। ये सुन करके मैं बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, इसको उठा करके आलिंगन किया और कहने लगा, साधु साधु गुप्त तुम्हार सुदृढ़ भजन, अमर बचने है तुम्हार ना टलिल मन। धन्य है तुम, वास्तव में साध बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। मेरे द्वारा बार बार उपदेश देने के बाद भी तुम्हारा मन भगवान राम को नहीं छोड़ा, बहुत धन्यवाद। यही मत सेवक प्रीति चाहिए प्रभु पाए, प्रभु छड़ा ले है पद छड़ा न जाए। इस तरह से सेवक को चाहिए कि वो अपने प्रभु के चरण में प्रेम करे, और प्रभु स्वयं ही छोड़ावे तब भी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बाद में उदाहरण दिए, जैसे गोपियों को भगवान लौटा रहे थे कि लौट जाओ, पर उन्होंने नहीं छोड़ा, कई ऐसे उदाहरण। तो स्वयं भगवान राम ही कहें तब भी नहीं छोड़ना चाहिए, और वो तो राम ही हैं बोल रहे हैं कि छोड़ दो, ऊपर से बोल रहे थे प्रभु छड़ा ही ले पद छड़ा न जाए, नहीं छोड़ना चाहिए। यही तो सच्चा प्रेम है वास्तव में। जब भगवान के चरणों में समर्पण किए तो उनका चरण कैसे छोड़ा जा सकता है, चाहे उनका कोई रूप हो, चाहे नरसिंह देव का रूप हो या बराह भगवान का हो, भगवान श्री राम या स्वयं भगवान कृष्ण। जब दे चुके जीवन तो दे चुके, कभी स्वामी का त्याग नहीं करना चाहिए, और वही छोड़ाने लगे तब भी नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़, यही सच्चा प्रेम है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि भगवान अपने लीला में किसी अपने प्रेमी को कहते हैं कि तुम चले जाओ, दूर जाओ, ये जाओ, जैसे लक्ष्मण जी को कह रहे थे तुम अयोध्या में रहो, माता पिता का पालन करो, प्रजा को सुखी करो, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं आपके बिना जी ही नहीं सकता हूँ, जीऊंगा तब मैं किसी को सुख दूंगा, आप अयोध्या में रहिए तो मैं भी रहूंगा, आप वन में जा रहे हैं मैं नहीं जी सकता। सीता जी भी जाने लगी, उसको भी भगवान रोक रहे थे, लेकिन उसने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी, तो वो गई। स्वयं स्वामी ही छोड़ावे फिर भी नहीं छोड़ना चाहिए। एक भोजपुरी में कहावत है, कोई स्त्री कह रही है चाहे मार गरियाओ पिया तोरे ओरियाओ। इसका अर्थ है कि कोई पत्नी, पतिव्रता पत्नी अपने पति से कह रही है कि चाहे तुम मुझे मारो, चाहे गाली दो, चाहे मार गरियाओ, कुछ भी करो, लेकिन प्रियतम तुम्हारे साथ ही तो जीवन भर रहना है। इस तरह से वो स्त्री कह रही, तुम्हारे साथ ही जीवन बिताना है, मैं कहाँ जाऊंगी, तो चाहे मारो चाहे गाली दो। तो इसी प्रकार भगवान के चरणों को पकड़ना चाहिए पतिव्रता स्त्री की तरह। प्रभु छाड़ा लेह पद छाड़ा न जाए, ऐ मत तुमार निष्ठा जानी बार तरे, तुम्हारा आग्रह यामी कैनू बारे बारे। तो मुरारी, तुम्हारी निष्ठा को जानने के लिए, भगवान राम में कितना तुम्हारा प्रेम है इसको जानने के लिए मैं तुमसे बार बार आग्रह कर रहा था कि राम को छोड़ दो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण मधुर हैं, ये हैं। साक्षात हनुमान तुम्हें श्री राम किंकर तुम्ही के ने छाड़िवे तर चरण कमल। तुम साक्षात हनुमान जी हो, श्री राम के दास हो, तुम कैसे छोड़ सकते हो राम का चरण। सही मुरारी गुप्त आई मोर प्राण सम, इहर दैन सुनी मोर फाटे जीवन। तुम मुरारी गुप्त रो रहे थे विदा होते समय, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यह मुरारी गुप्त मेरे प्राण के समान है, इसकी दीनता देख करके, दुख देख करके मेरी छाती फटती है। तबे वासुदेव प्रभु करे आलिंगन, तार गुण कहे है या सहस्र वदन। इसके बाद वासुदेव का आलिंगन किए, एक भक्त थे जिन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु से ये वर मांगा था कि प्रभु आप दयालु हैं, दया के समुद्र हैं, सारे जीव दुखी हैं, अब पूरे ब्रह्मांड के जीवों को अपने धाम में भेज दीजिए। उसके लिए रोते रहते थे चैतन्य महाप्रभु, स्वयं ही इस बात को कह रहे। निज गुण सुनि दत्त मन लज्जा पाया, निवेदन करे प्रभु रे चरण धरिया। हाँ, तो इस समय निवेदन कर रहे हैं। वसुदेव के गुण को चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, सहस्त्र बदन हो करके इतना बड़ा भक्त है, ऐसे है वैसे है। तो अपने गुण को सुनकर वासुदेव लज्जित हुए और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में निवेदन किए, जगत तारिते प्रभु तुम्हार अवतार, मोर निवेदन एक कर है अंगीकार। संपूर्ण विश्व के जीवों को तारने के लिए आपका अवतार हुआ है, मेरा एक निवेदन है, कृपया स्वीकार कीजिए, च चरण पकड़ कर वासुदेव कहते हैं, करिते समर्थ तुम्हें हव दयामय, तुम्हें मन कर तब अनायास है। तो भगवान ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अरे भाई हमारे शक्ति के भीतर होगा तब ना हम निवेदन सुनेंगे, हमारी सामर्थ्य होगी तब ना। तुम ऐसे चरण पकड़ करके विनय करने लगे, तब वासुदेव कहते हैं करिते समर्थ तुम्हें हव दयामय, आप हमारे निवेदन को पूरा करने में समर्थ हैं और दयामय हैं। यदि आपके मन में ये आ जाए कि इसकी इच्छा को पूरी करें तो आप अनायास कर सकते हैं। जीवेर दुख देखी मोरे हृदय बिदारे, सर्व जीवेर पाप प्रभु देह मोरे सिरे। जीवों का दुख देख करके मेरा हृदय फटता है, सारे जीवों ने जो पाप किया है वो पाप हमको दे दीजिए, मैं भोगूंगा और सब सुखी रहे। जैसे महाराज रंती देव ने प्रार्थना किया था भगवान से कि सभी जीवों का दुख मैं भोगूं, तो सबका पाप हमें दे दीजिए, हम भोगना चाहें। जीवेर पाप लैया मुई करो नरक भोग, सकल जीवेर प्रभु घुचा है भवरोग। तो सारे जीवों का पाप लेकर के मैं नरक भोगूं और सारे जीव सुखी हो जाएं, आपके धाम में चले जाएं। इतने महाप्रभु चित्त द्रविला, अश्रु कंप स्वर भंगे कहते लगीला। इस सुन करके इस प्रकार के दया का भाव चैतन्य महाप्रभु का चित्त द्रवित हो गया और उन्हें उनके आंखों से आंसू निकलने लगा, कंप कंपी होने लगी और स्वर भंग हो गया। गदगद वचन में चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, तुम्हारा विचित्र न है तुम्हें साक्षात प्रहलाद, तुम्हारा ऊपर कृष्ण संपूर्ण प्रसाद। ये विचित्र नहीं है वासुदेव, तुम साक्षात प्रहलाद महाराज हो और कृष्ण तुम पर पूरा पूरा प्रसन्न है। कृष्ण से ही सत्य करे जय मांगे भृत, भृत वंश पूर्ति बिनु नहीं अनकृत। अपने भृत्य की मांग को कृष्ण पूरा करते हैं, भृत्य की अपने सेवक की इच्छा पूर्ति के अलावा कृष्ण का और कोई कृत्य नहीं है। ब्रह्मांड जीवेर तुम्हें वांछिल निस्तार, बिना पाप भोगे हवे सवारा उद्धार। निश्चित है कि अगर तुम ये मांगते हो कि ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड के जीवों का उद्धार हो जाए तो निश्चित कृष्ण ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बिना पाप भोगे हवे सवारा निस्तार, उद्धार सबका निस्तार हो जाएगा, कृष्ण सब करेंगे। जो कृष्ण ही बोल रहे हैं तो स्वीकार कर लिया चैतन्य महाप्रभु ने, एक ब्रह्मांड के अनंत कोटि जीव जितने हैं सब वैकुंठ जाएंगे, सबका उद्धार हो जाएगा। वासुदेव और वासुदेव फिर नरक भोग नहीं करेंगे। असमर्थ न है कृष्ण धरे सर्व बल, तोमा के वा केने भुंजाई बे पाप फल। और कृष्ण तो बहुत समर्थ हैं, तो वो तुमको क्यों पाप का फल भुगाएंगे? अनंत कोटि जीवों के पाप का फल तुमको नहीं भुगाएंगे। तुम्ही जा रही तवांछा से है वैष्णव, वैष्णव पाप कृष्ण दूर करे सब। आप जिनका हित चाहते हैं कि यह व्यक्ति भगवान के धाम में जाए, नरक भोग आदि न करे, तो आपके संकल्प से ये सब वैष्णव हो गए। एक ब्रह्मांड में जितने जीव हैं सब वैष्णव हो गए, एक भक्त के शुद्ध संकल्प से उनमें भक्ति आ गई सभी जीवों में, इसीलिए पाप तो रहा ही नहीं। और वैष्णव यदि कोई पहले पाप किया है तो उस पाप को विष्णु दूर करते हैं, अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शोचन। तो उनका पाप सब भगवान दूर कर देंगे, कृष्ण दूर कर देंगे, तो आपको भी दुख नहीं भोगना पड़ेगा, आपको भी दुख नहीं भोगना पड़ेगा और इतने जीव मुक्त हो जाएंगे, चिंता मत करो। जस्तुन्द्र गोप मथवेन्द्र महो स्वकर्म, बंधान रूप फलभा जन्मा तनोति, कर्माणि निर्दहत किंतु च भक्ति भाजाम, गोविंद माद पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्म संहिता का श्लोक उद्धृत करते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो इंद्र गोप अथवा इंद्र एक कीट अथवा देवराज इंद्र, सबको अपने कर्म के अनुसार फल भाजनम आतनोति, फल का बर्तन दे देते, मतलब कर्म फल भुगाते हैं, लेकिन अपने भक्तों का कर्म बंधन भगवान छीन कर देते हैं, उन्हें भुगाते नहीं। ऐसे गोविंद का हम भजन करते हैं। तुम्हारी इच्छा मात्र हवे ब्रह्मांड मोचन, सर्व मुक्ति करते कृष्ण ना ही किछु शरण। तुम्हारे संकल्प से इच्छा से पूरे ब्रह्मांड के जीवों का को मुक्ति मिल जाएगी, वो भगवान के धाम में जाएंगे। और सबको मुक्त करने में कृष्ण को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, सुनेंगे बहुत मेहनत भगवान को करना पड़े, धीरे धीरे कोई ट्रांसपोर्टेशन द्वारा वैकुंठ भेजेंगे, ये व्यवस्था, वो टिकट रिजर्वेशन, ये वो, मतलब कुछ नहीं उनको करना पड़ेगा। एक उडुम्बर वृक्ष लागे कोटि फले, कोटि जे ब्रह्मांड भाषे बीर जार जले। और ये भी मत सोचे कि कृष्ण इसे नहीं करना चाहेंगे, कृष्ण करेंगे। एक उडुम्बर के वृक्ष में, गुलड़ के वृक्ष में करोड़ों फल लगता है, एक फल मान लो एक ब्रह्मांड की तरह, तो कोटि जे ब्रह्मांड भाषे बीरजार जले, तो कोटि कोटि ब्रह्मांड बीरजा नदी में तैरते रहते हैं कृष्ण के बनाए हुए सब। और एक 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 ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीव रहते हैं, और अनंत कोटि तो पहले तो ब्रह्मांड है वो अलग, और एक ब्रह्मांड के भीतर अनंत कोटि जीव है। तो तार एक फल पड़ी यदि नष्ट है, तथापि वृक्ष नहीं जाने निज अपचय। अगर गुलड़ के वृक्ष में मान लो करोड़ों फल लगे हैं, तो उसमें से एक फल यदि गिर जाए, नष्ट हो जाए, फिर भी उसे वृक्ष का तो कोई अपचय नहीं होगा, कोई इसमें कमी नहीं आएगी। तैछे एक ब्रह्मांड यदि मुक्त, तैछे एक ब्रह्मांड यदि मुक्त है, तब अल्प हानि कृष्ण मने नहीं लाए। तो ऐसे ही एक ब्रह्मांड के सारे जीव अगर मुक्त हो जाते हैं, तो उसमें कृष्ण को कोई हानि नहीं है, मन में सोचते भी नहीं है। अनंत ऐश्वर्य कृष्ण वैकुंठ आदि धाम, तार गढ़ खाई कारण लाभ जार नाम। अनंत कोटि वैकुंठ धाम है, अनंत ऐश्वर्य है कृष्ण, और उसके चारों तरफ जो खाई है, गढ़ खाई, उसका नाम है कारणाब्धि, कारण समुद्र। और ताते भाषे माया लैया अनंत ब्रह्मांड, गढ़ खाई ते भाषे जिन राई पूर्ण भांड। ताते भाषे माया लैया अनंत ब्रह्मांड, तो माया शक्ति के द्वारा भगवान इस तरह अनंत ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, गिनती में अनंत। तो ये सब बिरजा समुद्र में, वैकुंठ के बाहर ये सब बिरजा नदी में ऐसे तैरते हैं जैसे एक विशाल बर्तन में सरसों के दाने रखे गए, इतने इतने ब्रह्मांड हैं। तार एक राई ना से हानि नहीं मानी, ऐसे एक अंड ना से कृष्ण नहीं हानि। अगर उस बड़े विशाल बर्तन में से एक राई का दाना निकाल लिया जाए तो कोई कमी होगी क्या? कभी कभी लोग यहाँ चिंता करते हैं कि सभी लोग साधु हो जाएंगे, भजन करते और वैकुंठ चले जाएंगे, तो यहाँ क्या होगा, तब तो ये सृष्टि बंद हो जाएगी। सृष्टि तो ऐसे ही ये सरकार बंद करा रही है, अब बच्चा नहीं उत्पन्न करो, ये करो वो करो, परिवार नियोजन, ये सृष्टि रुक रही है, और इन लोगों के रुकने से रुकने वाली नहीं है। भगवान सृष्टि करते हैं और प्रलय भी वही करते हैं, ये लोग नहीं प्रलय कर सकते, रुकने वाले खुद ही मर कर चले जाएंगे, सृष्टि रोक रहे हैं। तो सारी जिम्मेवारी यही ले लिए सबको खिलाने पिलाने की, कैसे इतने लोग जिएंगे, और कोई समस्या नहीं आ रही है। अगर दूसरे जीव बढ़ रहे हैं तो सबका भोजन चल ही रहा है, जल में मछलियों को भोजन मिलता है, स्थल पर हाथियों को, सबको, कीट पतंग सबको, इसमें से कितने लोगों को ये लोग खिला रहे हैं? समुद्र में मछलियों को कितना भोजन देते हैं, आखिर वो खाते हैं कि नहीं? इतने वृक्ष उगे हैं, सब अपने जड़ से मूल से खाते हैं। आजकल का आदमी शासन में हो चाहे कहीं भी, वो क्या खिला रहा है, क्या दे रहा है, वो खुद कंगाल है, खा रहा है, भगवान का दिया हुआ खा रहा है। लेकिन अब बहुत लोग बढ़ गए, कैसे सब भोजन चलेगा, ये चलेगा वो चलेगा, इसलिए मारो, ऐसे करते हैं। तो वास्तव में भगवान की अनंत सृष्टि है, तो एक विशाल बर्तन में रखे हुए सरसों के दानों में से एक दाना निकाल दिया जाए तो कोई हानि नहीं। सब ब्रह्मांड सह यदि माया है छ, त तथापि न माने कृष्ण की सुरक्षा। यदि पूरे ब्रह्मांडों के साथ और माया शक्ति भी पूरा भी खत्म हो जाए तो कृष्ण का क्या बिगड़ेगा, वो तो वैकुंठ में स्वरूप शक्ति के साथ रहते हैं। उदाहरण देते हैं चैतन्य महाप्रभु की, कोटि काम धेनु पति झागी जैसे मरे ऐश्वर्य पति कृष्ण माया किवा करे। यदि करोड़ों करोड़ों कामधेनु गाय का कोई मालिक है, करोड़ों कामधेनु गाय हैं, और उस मालिक के घर में अगर एक बकरी मर जाए तो क्या उसकी बहुत हानि हो जाएगी? ये माया शक्ति भी मर जाए पूरा, बहिरंगा शक्ति न भी रहे तो कृष्ण को इसे क्या हानि है, क्या क्षति है उनकी? और अनंत ऐश्वर्य है कृष्ण का। कोटि काम धेनु पतिर छागी जैसे मरे ऐश्वर्य पति कृष्ण माया की वह करे। माया के नष्ट होने से क्या, तो माया के द्वारा रचा हुआ सारा ब्रह्मांड। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कोई बात नहीं, कृष्ण तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे क्योंकि तुम शुद्ध भक्त हो। यही जय जय जहिया जहिया जा मजित दो सगृहित गुणाम तमस जदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अग जगदो कसाम अखिल शक्तवबोधक ते क्वचिद जयात्मना चरतो नुचरे निगम। आत्मा यानी प्रकृति वास्तव में भगवान की दासी है, इस बात को कहने के लिए यह श्लोक उद्धृत किया गया। ऐ मत सर्व भक्त कहि सब गुण सबारे विदाय दिल कर या लिंगन प्रभुर बिछेदे भक्त करे न रोदान भक्तेर बिछेदे प्रभु विषण है लमन। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को विदा कर रहे थे, भक्त सब रो रहे थे चैतन्य महाप्रभु के विरह में, और भगवान भी चैतन्य महाप्रभु भी बहुत दुखित हो गए उस समय जब भक्त जाने लगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ठीक, जय श्री प्रभुपाद।
जय श्री गंधराज चैतन्य चरितामृतम की।